इंट्रोडक्शन में कहा गया मुझे इंग्लिश हिंदी तेलुगु गुजराती बंगाली आती है पर मारवाड़ी नहीं आती. मारवाड़ी में सिर्फ मैं क्या एक ही वर्ड सीखी हूँ, क्या है वो, खनी खनी गमा गमा खनी, बस उसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता मारवाड़ी में. तो बीकानेर के सारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णविंद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. वर्तमान इस्कॉन गुरु वृंद की जय. सो हरे कृष्णा. सो आज का जो शीर्षक है बड़ा ही विशेष है, आदर्श नारी, आदर्श महिला, आदर्श नारी. हालांकि यहाँ मुझे नारी तो कोई नहीं दिखाई दे रही है, सब बहुत सुंदर सुंदर क्या लड़कियाँ छोरी या क्या बोलते हैं, सुंदर सुशील प्यारी प्यारी गुड़िया दिखाई दे रही है सारी. लेकिन ये सारी गुड़िया आगे चल के सब जो है नारी बनेगी, आदर्श स्त्री बनेगी और पूरे परिवार को जो है संभालेगी. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी हम इस पे चर्चा करें सो दैट जो गलतियाँ हम कर चुके हैं वो आप लोग ना करें और एक सुंदर और एक आनंदमय भक्ति केंद्रित परिवार का आप जो है चालन करें, सुंदर से आपकी जीवन जो रहे. तो आदर्श नारी आदर्श स्त्री पे हम चर्चा करेंगे. तो उसके पहले मैं श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लूँगी और उसके अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैश्चिकी. श्रीमद्भागवतम की जय. तो ये श्लोक श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 है. प्रसादशीखरारूढ़ा करुणायोधि दक्षया विवुक्षः कुसुमे कृष्णं प्रेम व्रेडा स्मिते क्षणाम. तात्पर्य अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद जी की जय. भगवान को देखने के लिए प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हस्ती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी. तात्पर्य लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है. महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी. जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों का पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चालू हुई. महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे ना आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी. यहां यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी. वह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. भले ही वे उच्च कुल की ना भी हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है. एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों को की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों से सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चुंगुल में छूटने में महासहायक बनने के लिए है, जैसे कि भारत के ऋषि या मुनियों को संकल्पन था। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवन स्फुलिंग का संयोग है, अतएव यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकर्ष नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी क्यों न बनाई गई हो। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसीलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में है, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग में अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए, और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय है। आज बहुत सारी कहानियां नहीं बताऊंगी, सिंपल सी चर्चा होगी। हमारे मोदी जी नहीं बोलते मन की बात, चाय पे चर्चा, बस आज ऐसे ही आप लोगों के साथ एक चर्चा करूंगी। एक सिंपल सी बात जो मेरे मन में आ रही है जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, कितनी सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लज्जा जो है वे नेचुरल ब्यूटी है, स्त्री का एक आभरण है, एक आभूषण है। और ये बात अगर हम आजकल की लाइफ में उपयोग करें तो लोग सोचेंगे कि हम बहुत ओल्ड फैशन है, लेकिन हमारे शास्त्र में जो भी कहा गया है वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही साइंटिफिक है। आप देखिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं और वे रथ आरोह हो रहे हैं, और स्त्रियां जो है सब ऊपर छत पे गई है और वहां से भगवान को जो है देख रही है। छोटी सी बात है, लेकिन कितना बड़ा लेसन है। यहाँ पे महिलाओं का सदाचार के बारे में बताया गया है। सदाचार, सद माने गुड, आचार माने बिहेवियर, एटिकेट जैसे हम को कहते हैं ना वैष्णव एटिकेट, वैसे ही गर्ल्स, लेडीज, महिलाओं का क्या एटिकेट होना चाहिए, उन्हें कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। Somebody has to be muted. So, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हमारे कल्चर में हर एक रीति रिवाज का एक विशेष कारण है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि लोग कोई भी रीति रिवाज में मानते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि हम जितना मॉडर्न हो जाएंगे, जितना शॉर्टकट कर देंगे हर चीज़ का, तो हम वेल एजुकेटेड है। उन दिनों में जैसे पहले के ज़माने में शादियां माने 7 से 10 दिन का कार्यक्रम होता था, कितनी सारी रीति रिवाज। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, रजिस्टर मैरिज कर लो, मैं उसको माला पहना दूंगा, वो मुझे माला पहना देगी, खर्चा बच गया, बस चलो, ये सब क्या ज़रूरत है। लेकिन हर एक चीज़ हमारी जो संस्कृति में है उसके पीछे कितना कुछ कारण है। ये जो शादी का ये जो पवित्र रिश्ता दो पति पत्नी के बीच में जो ये बंधता है, अग्नि के साक्षी अग्नि को साक्षी मानते हुए जो वे फेरे लेते हैं, कितने सारे प्रण लेते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आजकल शादियों में शायद उनको पता भी हो कि वे क्या वचन दे रहे हैं एक दूसरे से। कितने सारे वचन होते हैं उसमें, एक दूसरे का ध्यान रखने का। पति वचन लेता है कि मैं हर चीज में पत्नी से मंत्रणा लूंगा, उसकी भी जो है एडवाइस लूंगा, मैं उसका पोषण करूंगा, मैं उसका उत्तरदायित्व लूंगा। और पत्नी भी व्रत लेती है, पत्नी भी जो है प्रॉमिस करती है कि मैं जो है हर धर्म के कार्य में पति का साथ दूंगी। और इतना सुंदर जो है अपने पति के परिवार के जो लोग हैं उनके साथ सदव्यवहार करूंगी, ऐसी कितनी सुंदर सुंदर एक दूसरे को वचन देते हुए वे आगे बढ़ते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये पूरा जो सिचुएशन है उसमें एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेना और सब के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए इस पवित्र संबंध में आगे पैर बढ़ाना, आपको आप लोग सब लड़कियां हैं, लेकिन आई एम श्योर यहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं है जो आगे चल के संन्यास लेने वाली है, क्योंकि लड़कियों को संन्यास नहीं है, तो सबकी शादी होने वाली है। और ये सारी चीज़ों में मेंटली प्रिपेयर होना है कि कैसे एक लड़की के हाव भाव होने चाहिए, शास्त्र के अनुसार कैसे उसका जीवन होना चाहिए, जिससे उसे सम्मान भी मिलेगा और वे आनंद से अपना जीवन को आगे बढ़ा पाएगी। तो आजकल शादी को एक मजाक बना के रख दिया है, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। कोई पसंद आ गया, शादी कर ली, कल को झगड़ा हो गया, एक दूसरे को छोड़ दिया। हालांकि डिवोर्स ऐसा कोई शब्द है ही नहीं वैदिक स्क्रिप्चर्स में। एक बार जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पूरा जीवन एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। सी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जीवन से हम भगवान को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए कोई चीज में आनंद नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान को पाना, तो कोई ब्रह्मचारी लाइफ में रहे, सन्यासी लाइफ में रहे, वानप्रस्थ रहे या गृहस्थ रहे, जीवन का गोल है, लक्ष्य है भगवान को पाना। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में कदम आगे रखते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि दोनों मिलके, बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल, दोनों पति पत्नी के बीच में राधा कृष्ण, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, हम में भी कुछ खामियां होती है, पति में भी कुछ खामियां होती है, लेकिन भगवान में कोई खामियां नहीं है। तो दो अपूर्ण लोग जब पूर्ण भगवान की सेवा करते हैं तब वे भी जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए अमेरिका वगैरह में पहले 75% था डिवोर्स रेट अमेरिका में, अभी कम होकर 50% हो गया। ऐसा नहीं कि वे सुधर गए हैं, लेकिन अब उन्होंने शादी करना ही छोड़ दिया है, अब वे ऐसे ही साथ में रहते हैं, तो इसलिए डिवोर्स रेट जो है कम हो गया है। तो ये जो हमारी भारत की संस्कृति है, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स लेना और एल्डर्स के आशीर्वाद के अनुसार वे जहाँ कहते हैं सही लड़के से शादी करना, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई खुद चयन करता है तब भूल करने की ज़्यादा आकांक्षा है, क्योंकि जब माँ बाप लड़के को सेलेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को वे ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी जब इस धरा पे थे तब जब जितना पॉसिबल था वे अपने शिष्यों की शादी खुद ही मैच कर देते थे, किसका कैसा स्वभाव है। आगे चल के जब संस्था काफ़ी बढ़ गई और बहुत सारे भक्त हो गए तो उनको उतना समय नहीं मिलता था, लेकिन जब एल्डर्स सेलेक्ट करते हैं तो वे ठीक तोल मोल के जिसके साथ क्या सूट होगा, किसका स्वभाव किसके साथ मैच होगा, सब प्लान करके जो है वे आगे बढ़ते हैं। और जब एल्डर्स का, जब बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है तो डेफिनेटली जीवन में सब शुभ होता है। आप किसी का आशीर्वाद, किसी की प्रार्थना बहुत काम करती है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। 30 जून 1975 में ये एक सच्ची घटना जो घटी थी अमेरिका में, एक नगर में मैनहट्टन, वहाँ पे एक जॉन क्ले नाम का एक आदमी था, वो नाविक था। उसे समुद्र से बहुत प्यार था। 20 साल से वे नौका चला रहा था। तो एक दिन रात को 30 जून 1975 को हरिकेन आया, अटैक हुआ और उसकी जो नाव है वो डूब गई। तो अब उसको तैरना पड़ेगा, लेकिन पानी काफ़ी ठंडा था और 4 माइल दूर तक तीर दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो फिर भी जो है बहुत कोशिश करके तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि उसकी हाथ पैर पूरे नंब हो गए थे। तो उस टाइम में तैरते तैरते उसकी नज़र पड़ी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से जो लाइट आ रही थी उसे काफ़ी प्रोत्साहित कर रही थी, और वो पता नहीं एक अजीब सी शक्ति आ रही थी और वो तैरने लगा। और जब भी और तैर नहीं पाता तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ देखता और फिर से आगे बढ़ता और तैरते रहा। थोड़ी देर के बाद और शक्ति नहीं थी शरीर में, समहाउ भगवान की कृपा से एक प्लास्टिक का बॉल तैरते तैरते उसके छाती के पास आ गया। उस प्लास्टिक के बॉल को पकड़ के कैसे भी करके वो तीर तक पहुंच गया। साथ ही साथ में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 दिन में वो ठीक हो गया। 2-3 दिन के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड उसको मिलने के लिए आया। उसको पता भी नहीं था क्या हुआ इसके साथ। वो बता रहा था कि अरे मुझे बाद में आके पता चला, लेकिन मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले उस रात को जिस दिन तुम जो है पानी में डूब रहे थे, संभव मैं इतने सालों से न्यूयॉर्क में रहता हूँ लेकिन मैं कभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गया नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस रात को मैं मेरी पत्नी के साथ जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से सामने से गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था तो मेरे मन में बात आई चलो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखते हैं आज। तो मेरी पत्नी सू को लेके मैं छत पे गया एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के, और वहां पे जो बाइनोक्यूलर्स है उसमें जो अमेरिकन पेनी जो होता है एक पेनी डाल के मैं जो बाइनोक्यूलर से मैं और मेरी पत्नी बारी बारी से समुद्र की ओर देख रहे थे। और मैं मेरी पत्नी से कह रहा था कि अगर इस समुद्र को कोई पार कर सकता है, कोई तैर सकता है, तो वो मेरा दोस्त जॉन है। वो केवल वो कर सकता है, उसमें ये सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे समुद्र बहुत प्यारा है और समुद्र को वो बहुत प्यारा है। तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें हो रही थी और मैं बार बार मेरी पत्नी को बोल रहा था कि अगर कोई समुद्र को तैर सकता है तो वो केवल मेरा दोस्त है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है कि हाँ मेरा दोस्त कर सकता है, और ये यहाँ पे जो है स्विम कर रहा है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ओर देख रहा है, तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी शक्ति आ रही है। तो आप इमेजिन करिए किसी की प्रार्थना, किसी की ब्लेसिंग्स कितनी शक्तिशाली है। और ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद उसे एक चिट्ठी आई कैरिबियन आइलैंड से, उसका एक दोस्त था चक, उसने एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा प्रिय जॉन, पता नहीं क्यों लेकिन 30 तारीख रात को मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम कुछ मुश्किल में हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बहुत प्रार्थना की, और रात को जब मैं सो रहा था तो सपने में 3 नंबर 7 8 9 7 8 9 बार बार मेरे मन में आ रहे थे, पता नहीं क्या, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। तो जब ये चिट्ठी जॉन ने पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू, उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो जो प्लास्टिक बॉल में सोविनियर के जैसे लाया था ना, एक बार उस बॉल को लेके आओ। तो जब उस बॉल को लेके आया तो देखा उस बॉल पे लिखा हुआ था 7 8 9। अब आप इमेजिन करिए ये जो जॉन बच गया, दो लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसका एक दोस्त जो बड़ी दूर में कहीं कैरेबियन आइलैंड में था और उसका और एक दोस्त जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे था। अब इमेजिन करिए साधारण दोस्त भी अगर आपके लिए प्रार्थना करे, आपको आशीर्वाद दे, तो वो इतना अफेक्टिव होता है। तो इमेजिन करिए आपके घर के बड़े बुजुर्ग अगर आपको ब्लेसिंग्स दे, प्रार्थना करे, आपको आशीर्वाद दे, तो कितना अफेक्टिव होता है। तो हम जो ये सोचते हैं फॉर्मेलिटी, ये सब क्या है, ये ज़रूरी है क्या, बहुत ज़रूरी है। ये वैदिक कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, बहुत धनी है, बहुत रिच है, और यहाँ जो भी हम करते हैं बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल है। आप देखिए जब शास्त्र में आता है, भागवत में कैसे, जब ध्रुव महाराज के लिए भी विमान आता है तब ध्रुव महाराज ऐसे ही विमान पे नहीं चढ़ जाते हैं, हालांकि वैकुंठ से आया है, उनको लेने के लिए आया है, फिर भी वे नहाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, वैकुंठ का जो प्लेन विमान लेके आया है उनसे पूछते हैं मेरी माँ कहाँ है, फिर वो बताते देखिए आपकी माँ ऑलरेडी विमान में जा चुकी है ऊपर, तो बोलते तब ठीक है क्योंकि वे मेरे प्रथम गुरु है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके बाद जो है मैं जाऊँ। तो ये हमारा कल्चर है बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना। तो यहाँ पे मैंने कुछ गुण लिखे हैं, क्या गुण हमें होने से हमारा जीवन आनंदमय होगा और हम एक आदर्श परिवार की स्थापना कर पाएंगे। क्या गुण होने चाहिए एक स्त्री में, एक नारी में, एक लड़की में, क्योंकि पुरुषों से भी ज़्यादा नारी के हाथ में, इंग्लिश में कहावत है ना, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, जो हाथ झूला, जो बच्चों को झूला झुलाते हैं ना, उस हाथ में बहुत शक्ति है। और अगर नारी में अच्छे गुण हो, एक स्त्री में अच्छे गुण हो, तो पूरा परिवार को वो जो है सुंदर बना सकती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे पवित्रता। पवित्रता ये गुण बहुत ज़रूरी है एक स्त्री में। पवित्रता माने अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से पवित्रता माने स्नान करना, क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। लेडीज़ को हमेशा क्लीन रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद सबको बोलते थे, लेडीज़ को ही नहीं, वे कहते थे कि अगर हम जो ये प्रचार मूवमेंट में है, फर्स्ट यू ड्रेस देन यू एड्रेस, पहले ड्रेस करो उसके बाद एड्रेस, उसके बाद बात करो। नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। और एक है अंदर की पवित्रता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंदर की पवित्रता माने हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हम जो विचार करेंगे हम वो ही बोलेंगे, हम जो बोलेंगे हम वो ही करेंगे, हम जो करते रहेंगे वो हमारी आदत बन जाएगी, जो हमारी आदत बन जाएगी वो हमारा चरित्र बन जाएगा, और जो हमारा चरित्र बनेगा वो पूरा संसार, वो हमारी संस्कृति बन जाएगी। तो आप सोचिए एक विचार कितना महत्वपूर्ण है, आपके मन में कैसे विचार आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बाहर से ही नहीं, बाहर से तो आप दो बार तीन बार नहाओ, आप बाल ठीक से बनाओ, देखने में आप जो पवित्र लगो, लेकिन अंदर से भी पवित्रता होना बहुत ज़रूरी है। सो कैसे रहे अंदर से पवित्र? आजकल का जिस तरह से वातावरण है, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम क्या देखते हैं, किन से एसोसिएट करते हैं, किन से बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखिए पुराने ज़माने में, वैदिक कल्चर में, लड़कियों की शादी बचपन में ही कर देते थे। अगर अब ये बात बोलेंगे तो लोगों को लगेगा ये आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो सही होता था। जब बचपन में उनकी शादी हो जाती थी, ऐसा नहीं था कि वे बचपन में अपने पति के साथ रहते थे, शादी होने के बाद वो अपने घर, पति अपने घर, और वहाँ पे फिर उनके माँ बाप उनको ट्रेनिंग करते थे, और सही समय आने के बाद वे फिर से मिलते थे। और बीच बीच में जब वे बड़े हो रहे हो, बीच बीच में कभी साल दो साल में कोई फंक्शन पे, दिवाली पे, संक्रांति पे, कोई फेस्टिवल पे वे एक दूसरे से मिलते थे। कभी लड़की ने कुछ मिठाई बनाई, कुछ बनाई तो इनके घर जाके देंगे, ये उनके घर आएंगे। तो उस तरह से क्या होता था, मन पवित्र रहता था, किसी और पुरुष के बारे में विचार ही नहीं आते थे, क्योंकि बचपन से उनको पता था कि ये मेरा पति है और मुझे इसके बारे में ही सोचना है, आगे चल के मुझे इसके घर जाना है। और जो पति था उसे भी किसी और स्त्री को देख के कोई बुरा विचार नहीं आता था, क्योंकि उसको पता है मेरी शादी ठीक हो गई है, मेरी पत्नी जो है वो है और आगे चल के जो है वो मेरे साथ रहने वाली है। तो उसमें इतना सुंदर पवित्र मन रहता था दोनों का, पति और पत्नी का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक पुरुष को भी ब्रह्मचार्य मेंटेन करना और पत्नी को भी कुछ साल तक ब्रह्मचारिणी लाइफ में रहना, और उसके बाद जब उनका मिलन होता है तो जो बच्चे भी पैदा होते हैं वे अच्छे गुणों के साथ में पैदा होते हैं। लेकिन आजकल का सिचुएशन जिस तरह से है, पुरुष और स्त्री का काफ़ी फ्री मिक्सिंग होता है, क्योंकि लेडीज़ भी बाहर में नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, और इससे काफ़ी लाइफ्स अफेक्ट हो रही है, फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही है। अब ऑफकोर्स अगर मैं ये बात कहूँगी तो बहुत सारे सोचेंगे माताजी आप ओल्ड फैशन है। मैं ओल्ड फैशन नहीं हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ वैदिक स्क्रिप्चर्स को अपनाने में, और मेरा जीवन आनंदमयी है, और मैं इस बात को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप उसको किस तरह से लेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड फॉर्मूला है, मतलब मैंने कोई पुस्तक से नहीं लिया है, मैं अपने जीवन से बता रही हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी के 24 साल सितंबर 25 को कंप्लीट हो रहे हैं और मैं 25वें साल में एंटर कर रही हूँ और हमारा जीवन काफी आनंदमय है क्योंकि हम शास्त्र के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और मैं देख रही हूँ जो सो कॉल्ड मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं उनके जीवन में आनंद नहीं है, वे अशांति से भरे हुए हैं, वे दुखी है क्योंकि पत्नी भी बाहर में काम करती है, पति भी बाहर में काम करता है, पत्नी रात को 8-9 बजे घर आती है, पति भी 8-9-10 बजे घर आते हैं, पत्नी किसी की कई और पुरुषों से बात करती है, घूमती है, पति भी, और उस तरह से जो है उनका मन पवित्र नहीं रह पाता क्योंकि ये शास्त्र में कहा गया है, मेरे और आपके कहने से नहीं है, शास्त्र में कहा गया है कि जिस तरह से अभी जैसे हमने पढ़ा तात्पर्य में कि नवनीत को अगर आग के पास में लाया जाए तो नवनीत गल जाता है, तो जितना हो सके स्त्री पुरुष को जो जरूरी बात है, जो काम की बात है, उससे ज्यादा मिलना मिक्स होना अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे तो क्या करें, तो आप क्या कहना चाहती है कि लेडीज को बाहर में जॉब नहीं करना चाहिए? क्या वैदिक टाइम्स में, पुराने जमाने में महिलाएं बाहर में काम नहीं करती थी? नहीं, करती थी, पुराने जमाने में भी महिलाएं बाहर काम करती थी। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगी कृष्ण लीला में। आप कृष्ण लीला में देखिए, भगवान कृष्ण को फल बेचने के लिए आती है एक महिला, फ्रूट सेलर लेडी जो टोकरी में बहुत सारे फल लेके आती है और भगवान कृष्ण को देती है, ये कथा तो आपको याद होगी। तो वो पुरुष नहीं था, वो महिला थी, उसका मतलब उस जमाने में भी महिला बाहर में जाती थी और काम करती थी। तो अब काम करने में गलत क्या है? तो अब काम करने में गलत ये है, मैं डिफरेंस आपको बताती हूँ। उस जमाने में जब लेडीज बाहर में काम करती थी, उनके काम करने का जो क्षेत्र होता था वो घर के आसपास होता था, मतलब यहाँ बागान है, कुछ फूल ले लिए तो कुछ आसपास के घरों में जाके फल बेच दिया, फूल बेच दिया, तो उनका जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता था। या तो कभी कभी पति पत्नी मिलके काम करते थे, जैसे खेती पे जाते थे तो पति भी कुछ ये कर रहा है, बीवी पत्नी भी जो है बीज बो रही है, तो दोनों साथ में मिलके काम करते थे। और कभी कभी क्या होता था, कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे जो महिलाएं हैं वे अपने घर में कभी कुछ पापड़ बना दिया, अचार बना दिया, बस उसको बेचना, तो ये होता था। लेकिन जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मैकेनाइजेशन हो गया, तब क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, और उसके बाद में जो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स खुलने लगी तो जो पुरुष थे उनको भी अपने घर से दूर जाके काम करना पड़ा, और फिर जब स्त्रियां भी उनके जैसे घर से दूर जाने लगी तो तब परिवार में डिस्टरबेंस आना शुरू हो गया। और दूसरा बात, मैकेनाइजेशन से क्या हो गया, पहले क्या होता था, जेंडर कॉम्पैटिबल काम करते थे, मतलब लड़कियां वजन नहीं उठा सकते, लड़के वजन उठा सकते, लड़कों को वो काम, लड़कियों को और। अब क्या हो गया, मैकेनाइजेशन आने के वजह से हर एक काम हर एक पर्सन कर सकता है क्योंकि सब कुछ तो मशीन से होता है, तो उस काम लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर सकती है। तो अब देर देर रात तक लड़कियों को भी रहना पड़ता है, बीपीओज में, दूसरे सर्विसेज में नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती है, कभी लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, और अपने परिवार से दूर जाके काम करना पड़ता है, तो उस तरह से जो है पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल, अगर ट्रेडिशनल हाउसवाइव्स जो हमने देखे हैं जब हम छोटे थे जॉइंट फैमिली में, या हमारे जो दादा दादी वगैरह का जो जीवन देखा था, वो काफी खुशहाल था। एक होम मेकर, एक पत्नी का बहुत सुंदर रोल होता था, सुबह जल्दी उठना, रंगोली बनाना, खाना बनाना, पति को ऑफिस भेजना, बच्चों को तैयार करके भेजना, उनके जाने के बाद घर की सफाई करना। अब तो MTR मसाला, बादशाह मसाला, प्रिया मसाला आ गया, लेकिन उन दिनों में वो मसाला बांट के रेडी रखना, घर के जो बड़े हैं उनके पास में रामायण पढ़ना, वो जाने के बाद शाम को धूप लगाना, घर में दीप जलाना, फिर रात के खाने की तैयारियां करना, घर के जो पशु थे गाय या भैंस या जो है उनकी रक्षा करना, एक सुंदर सा वातावरण था घर में। और जैसे हम बड़े हुए थे जॉइंट फैमिली में, तो हमने देखा है जो लेडीज होती थी उनको काफी इमोशनल सपोर्ट भी मिलता था, दूसरी लेडीज से बात करना, कुछ मन में आया, आपने कुछ कुछ मन में दुख है या कुछ भी है तो किसी और से शेयर करना। अब क्या हो जाता है कि लेडीज अकेली है घर में, या तो बाहर में काम कर रही है, नहीं कर रही है तो चार दीवारी में वो अकेली है और वेट करती है कि पति कब आएगा। और जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं उसको हजारों बातें करने का दिल करता है क्योंकि उसने पूरा दिन किसी से बात नहीं किया, तो बोर हो जाती है। और पति सोचता है कि मैं अभी अभी थक के आया, ये फिर एकदम मेरे पे चालू हो गई है, तो कोई भी खुश नहीं रह पाता है। लेकिन उन दिनों में इतना ज्यादा इमोशनल सपोर्ट होता था जॉइंट फैमिली में कि लेडीज जो है बहुत सेटिस्फाइड रहती थी। पूरा दिन जेठानी से देवरानी से गप्पे मारा, साथ में बातचीत किया, हंसा रोया, कितना कुछ हो गया। उसके बाद रात को जाके पति आने से तब तक उसकी ऑलरेडी मतलब थक गई है, पूरा दिन का इतना आनंद किया। तो ये सारे जो है हमारे हमारा कल्चर अभी डिस्ट्रॉय हो गया है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और ये जो बाहर में काम करते हैं, दूसरे लोगों से फिजिकली मिक्स होते हैं, हैंडशेक करना या जो मॉडर्नली हक करना, बात करना, ये मन को शरीर को दूषित कर देती है। और जिसका मन और शरीर दूषित होता है उसका एम्पावरमेंट नहीं होता, उसकी शक्ति नहीं होती है, उसमें उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती। जैसे आप देखिए पुराने पुराण में से अगर मैं आपको कथाएं बताऊं कैसे एक नारी की इतनी शक्ति होती थी कि एक कथा आती है आई थिंक आत्री मुनि की, अनुसुया के बहन की कथा आती है, कैसे उनके पति जो है वे हैंडीकैप थे और वो एक जो है बास्केट में उनको लेके घूमती थी। और एक बार गलती से मार्कंडेय ऋषि को पैर लग गया तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि ये कल मर जाएगा, कल का सूर्य उदय के साथ ये मर जाएगा। तो इसकी इतनी पतिव्रता नारी थी वो कि उसने कहा कल का सूर्य उदय होगा ही नहीं। और क्योंकि उसने कह दिया सर सूर्य उदय हुआ ही नहीं, और सारे देवता आके उसे प्रे करने लगे कि आप ऐसा मत करो, सूर्य उदय होने दो। और फिर उसके बाद काफी रिक्वेस्ट होने के बाद में फिर जो है सूर्य उदय हुआ और उनके पति को जो है आशीर्वाद मिला कि नहीं उनको कुछ नहीं होगा। तो उतना पावर था उन दिनों में लेडीज का बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी। दूसरी बात है कि बाहर में काम करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेडीज बाय नेचर जो है उनका स्वभाव वाम स्वभाव होता है, मतलब बहुत ही मीठा स्वभाव, प्यारा स्वभाव होता है, और वे बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती है। जैसे आप देखिए द्रौपदी, हाँ उसको पहले तो गुस्सा आया कि मेरे पांचों बेटों को मार दिया, तो जब अश्वत्थामा को लेके आया अर्जुन, अब इसका क्या किया जाए, तब द्रौपदी ने कहा माफ कर दो, बेचारा गुरुपुत्र है छोड़ दो, कोई बात नहीं ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है छोड़ दो, नहीं मैं नहीं चाहती कि कृपी रोए अपने बेटे की मौत देके, नहीं उसको छोड़ दो। अब क्या किया द्रौपदी ने, गलती कर दी ना, क्योंकि छोड़ दिया, फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए। तो वाम स्वभाव, सीता माता का वाम स्वभाव, रावण आया तो उसको लगा नहीं भिक्षा तो देनी पड़ेगी, ब्राह्मण है, और भिक्षा देने के लिए गई और उसको जो है रावण ने उसका अपहरण कर लिया। तो बाय नेचर लेडीज जो है वे वाम स्वभाव की होती है और वे फिर फंस जाती है। तो इसलिए मनुस्मृति में कहते हैं कि लेडीज की रक्षा करनी चाहिए। बचपन में पिता रक्षा करते हैं, बाद में पति रक्षा करते हैं, और बूढ़े होने पर बेटा रक्षा करता है, और ये हमारी संस्कृति है। सी दूसरा चीज एसोसिएशन, बहुत जरूरी है कि हम क्या देखते हैं, किसके साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बारिश का पानी अगर सीपी के अंदर में जाए तो मोती बन जाता है, डोसा के तवे पे जाए तो भाप बन जाता है, उसी तरह से हम जिसके साथ एसोसिएट करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। स्पेशली आप लोग की जो अभी एज है, अभी अगर आप कुछ अच्छा सीखेंगे तो जीवन भर वो आपको हेल्प करेगा, अगर आप कुछ बुरी आदत लगा लेंगे तो जीवन भर वो आपको दुख देगा। तो अभी बहुत जरूरी है कि सही लोगों से एसोसिएशन करें। कैसे मित्र हैं आपके? ऑफकोर्स आजकल मित्र से भी ज्यादा सोशल मीडिया और आपका जो परम मित्र फोन है वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ए स्टैटिस्टिक्स, एक सर्वे, एक एवरेज अमेरिकन लड़का जब तक कि 18 साल की उम्र का हो जाता है तब तक वो ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा वॉयलेंस सीन देख चुका होता है, 9,000 मर्डर देख चुका होता है, 1,000 रेप सीन देख चुका होता है। इमेजिन करिए एक 18 साल का बच्चा, तो कितना ज्यादा ये सोशल मीडिया का जो है प्रभाव हम पे पड़ रहा है। तो हमें काफी केयरफुल रहना चाहिए, सेलेक्टिव रहना चाहिए। जिस तरह से पानी भी पीते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं कहीं मेरी आवाज़ खराब ना हो जाए, कोई मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, ये पानी कौन से कंपनी का है, बिस्लरी का है कि एक्वाफिना है, क्या है, उसी तरह से एसोसिएशन लेते समय भी सोचना चाहिए किसका संग कर रही हूँ, इसके संग से मेरा मन खराब तो नहीं हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। और हम जिसको देखेंगे, जिसको आइडियल बनाएंगे, हम उसके जैसा बनेंगे। अगर हम बॉलीवुड एक्टर्स को हमारी आइडियल बनाते हैं तो हम उनके जैसा बनेंगे। अगर हम देवहूति के बारे में सुनते हैं, हम अनुसुईया के बारे में सुनते हैं, हम सीता माता के बारे में सुनते हैं, हम तारा मंदोदरी के बारे में सुनते हैं, तो हम उनके जैसा बनेंगे। तो बहुत जरूरी है हम क्या कंटेंट हमारे कानों में डाल रहे हैं। दूसरी बात है बड़ों का आदर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यभामा एक बार द्रौपदी से पूछती है कि हम कोशिश करते हैं कृष्ण को खुश रखने के लिए, लेकिन आपसे सीखना चाहते हैं, 5 पति है और सब आपको इतना आदर देते हैं, हालांकि उनकी और भी पत्नियां हैं, लेकिन 5 पांडव आपको इतना आदर क्यों देते हैं। तब द्रौपदी बहुत सारी चीजें बताती है सत्यभामा को कि एक पत्नी का रोल क्या होना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, रात को सबके बाद सोती हूँ, मेरे पति के जितने भी जो परिवार के सदस्य हैं उनका मान करती हूँ, मैं कभी भी बड़ों के सामने जवाब नहीं देती हूँ, और ऐसे करके बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताती है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, द्रौपदी कहती है कि मैं बिना मांगे एडवाइस नहीं देती हूँ, मेरे पति अगर मुझे पूछते हैं तुम क्या सोचती हो इसके बारे में, तभी जाके मैं मुंह खोलती हूँ, मैं बिना मांगे किसी भी चीज का एडवाइस नहीं देती हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है, भगवान ने पुरुष को जो है अहंकार से बनाया हुआ है, मतलब उनका एक ईगो होता है, और जो स्त्रियां है उनको अलग तरीके से बनाया हुआ है। स्त्रियों का जो है वे कोमल होती है, वो प्यार करना जानती है, प्यार देना जानती है, वे लॉजिकल नहीं होती है, वे इमोशनल होती है, और जो मेन होते हैं वे थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं। ये एक, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़कियों का सेशन है, तो मैं काफ़ी खुल के बातें बता रही हूँ कि ये मेन का साइकोफिजिकल नेचर होता है, वे अपने पत्नी के हीरो बन के रहना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अगर पत्नी बिना मांगे एडवाइस देना शुरू करती है तो उन्हें ईगो को हर्ट होता है कि अच्छा मतलब उसको मुझसे ज़्यादा पता है, तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा वो बात। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इंग्लिश में मैं 3 आपको 3 ये बताऊँगी, जस्ट ये टिप्स है आगे चल के आपके गृहस्थ जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, 3 चीज़। हमारा बिहेवियर कैसा होता है, कभी कभी हमारा बिहेवियर नॉर्मेटिव होता है, मतलब ये सही है ये गलत है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल सही है, ये नॉर्मेटिव है। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा ये करो। एक है डिस्क्रिप्टिव, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, आप करना चाहिए तो करिए। अभी एज ए पत्नी हमें डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव होने से ही परिवार में झगड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भक्ति करना चाहती हैं और आपके पति भक्त नहीं है, उनको भक्ति जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप नॉर्मेटिव हो जाओगे, हाँ आप चैंटिंग नहीं करते, फिर तो आप बिल्कुल गलत करते हो, हाँ आप प्याज लहसुन खाते हो, हाँ तो हो गया, कि क्या कर रहे हो आप नॉर्मेटिव, आप उसको बोल रहे हो ये सही है ये गलत है, उसको और भी गुस्सा आएगा। या तो आप उसको एडवाइस दोगे, देखो तुम 4 माला करो। मैं बहुत बार देखती हूँ कुछ माता जी है ना, कोई हस्बैंड वाइफ आते हैं ना, तो मुझे बोलते माता जी देखिए ना, मैं रोज उनको बोलती हूँ माला करने के लिए, बिल्कुल नहीं करते, अब तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऐसा कहा, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है किसी का प्रिस्क्रिप्शन लेना, तुम माला करो, तुम ये करो, तुम ये मत करो। तो अच्छा अप्रोच होगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब आप उनको मत बताओ उनको क्या करना है, लेकिन आप करो, और अगर वो पूछेंगे तो बताओ मुझे अच्छा लगता है, मैं जब माला करती हूँ मुझे मन में शांति लगती है, मैं जब माला करती हूँ भगवान की रक्षा हम पे रहती है, भगवान की आशीर्वाद हम पे रहते हैं। तो जब आप करके दिखाओगे और आप करते हुए आनंद पा रहे हो, तो वे अपने आप इंस्पायर होंगे करने के लिए। लेकिन अगर आप उनको एज ए बॉस बताओगे ये करना ही चाहिए, ये करना ठीक रहेगा, फिर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप अपने जीवन में अपना सको तो आपका जीवन कितना सुखमय होगा। तो बड़ों का आदर करना, बहुत बार ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, माता जी आपने बोला पति का आदर करना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए, लेकिन मेरा पति तो भक्त नहीं है और वो मुझे मांस मच्छी कुकिंग करने के लिए कहता है या मंदिर नहीं जाने देता तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि बेशक आपका पति भक्त ना हो फिर भी उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब आप कहेंगे फिर तो अगर हम मांस मछली बनाते हैं तो दोष होगा। सी ये बहुत ही क्या बोलते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव बात है। यूजुअली जब आप भक्ति में आते हो उसके बाद भी अगर आपका पति बोलता है कि नहीं तुम मीट बनाओ या कुकिंग करो या ये बनाओ, बेसिकली वो चेक करना चाहता है कि आप कितना उसकी बात सुन रहे हो। नहीं तो उसको एक इनसेक्योर फीलिंग आ जाती है कि मुझसे भी ज्यादा प्रभुपाद, ये कौन है ये प्रभुपाद, इतने इंपॉर्टेंट हो गए, कौन है ये गुरु महाराज, कौन है ये कृष्ण, सब इतने इंपॉर्टेंट हो गए और मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं उसकी लाइफ में सडनली। तो ये वो बेयर नहीं कर पाता। जिस तरह से आप देखें जब दूसरा बच्चा होता है तो पहला बच्चा बहुत इनसेक्योर हो जाता है कि मम्मी इसको इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रही है, मुझे क्यों नहीं दे रही है। उस तरह से पति भी इनसेक्योर हो जाते हैं कि इतना इंपॉर्टेंस भगवान को, मेरी बात नहीं सुन रही है। तो जब आप सुनते हो फिर अपने आप से वो बोलते हैं ठीक है फिर तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं। बट अगर पहले ही आप अग्रेसिव हो जाते हो कि मैं नहीं करूंगी तो पूरा घर का वातावरण डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस तरह से बहुत केयरफुल, अगर कोई बता नहीं मंदिर मत जाओ, हाँ ठीक है नहीं जाएंगे घर में ही करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से प्यार से सेवा करोगे तो वो अपने आप से ले जाएगा, ठीक है चलो चलते हैं आज तुम्हें खुश करते हैं। तो किसी को भी जीतना है तो प्यार से ही जीत सकते हैं, झगड़ा से कोई नहीं जीत सकता। इतना प्यार करना चाहिए कि इंसान को मतलब क्या ना यहां तक आ जाए आपका प्यार और वो आपको वापस प्यार करना चाहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, आप कहेंगे पर इतना विनयी मैं क्यों बनूं, मुझे नहीं बनना इतना विनयी, मेरी भी कोई लाइफ है, मैं भी एजुकेटेड हूं, मैं क्यों इतना बेंड हूं। भगवान के पास किसको जाना है? अगर आपको जाना है तो आप बेंड हो, अब नहीं जाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू करो, आप करो झगड़ा वो भी करेंगे और वो लाइफ चलती रहेगी। लेकिन अगर आप सीरियस है और आप जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन तो ये तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग है आपको, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए भी हमें दो गुण चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो निस्वार्थ सेवा और एक तो स्वतंत्रता, ये जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ये हमें छोड़नी है, हमें भगवान को सबमिट करना है, सरेंडर करना है, शरणागति लेनी है। तो भगवान से अगर हमें शरणागत होना है तो पहले पति से शरणागत होना सीख जाएंगे तो अपने आप से भगवान की शरणागति लेनी आसान हो जाएगी। हमारी ये जो हम इतने बार जन्म क्यों लेते हैं, बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारा दो शरीर है, एक तो ये ग्रॉस शरीर है, जल वायु पृथ्वी पांच चीजों से तत्वों से बना हुआ, और एक है सूक्ष्म शरीर जो मन अहंकार और बुद्धि से बना हुआ है। ये सूक्ष्म शरीर में जो ये अहंकार है, इस अहंकार को निचोड़ना है, इस अहंकार को हमें झुकाना है। तो ये अहंकार जब पति के सामने झुकना सीख जाता है फिर भगवान के सामने भी झुकेगा, और स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं लाइफ में फिर निस्वार्थ जीवन जीने की भी ट्रेनिंग हो जाती है। क्योंकि फिर आप निस्वार्थ, अगर दो ही चपाती है तो सबसे पहले आप सोचोगे पहले मेरे बेटे को दे देते हैं, आप वृंदावन जाना चाहते हो बच्चे के एग्जाम से आपको रुक जाना पड़ेगा। धीरे धीरे निस्वार्थ जीवन, दूसरे के लिए आपको जो अच्छा लगता है उसका सैक्रिफाइस करना, बस ये दो गुण अगर किसी में आ जाते हैं तो वो अच्छे भक्त बन जाते हैं और गोलोक धाम जा सकते हैं। तो ये तो हमारा ट्रेनिंग हो रहा है हस्बैंड के साथ और परिवार के साथ जब हम रहते हैं। स्त्रियों को ये अपॉर्चुनिटी है निस्वार्थ सेवा करना सीखना और विनय होना सीखना और सरेंडर शरणागति लेना, जैसे कहे वैसे मान के चलना, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को कम करना। अगर हम ये कर सकते हैं तो वी कैन बिकम सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डिवोटीज। दूसरी बात है कि स्त्रियों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, स्त्रियाँ एनर्जी है और इस एनर्जी से ही पुरुष काम कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज ए वुमेन। स्त्री इतनी पावरफुल होती है। आप देखिए श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के दूसरे अध्याय के पांचवा श्लोक, वहां पे पूर्वचिति अप्सरा के बारे में आता है, कैसे वो चलती है तो उसके पायल के घुंघरू के आवाज से अग्निधर की तपस्या खराब हो जाती है। आप देखिए तीसरे स्कंद में देवहूति के बारे में आता है, कैसे देवहूति गेंद से खेल रही है छत के ऊपर में तो विश्ववासु गंधर्व है अपने विमान से नीचे गिर जाता है उसकी सुंदरता देख के। अब आप देखोगे ये सारे भागवत में जो आते हैं कभी आप इसका उल्टा नहीं देखोगे कि कोई कोई आदमी कोई गेंद से खेल रहा था और कोई स्त्री उसको देख के गिर गई। ये जो है सिर्फ पुरुषों में होता है, क्योंकि स्त्रियां बहुत पावरफुल होती है। बहुत अट्रैक्टिव होती है और वे अपनी एनर्जी से जो है एक पुरुष को एम्पावर कर सकती है, बस सही जगह पे उसे जो है अपनी एनर्जी को यूज करना है। या तो वे किसी के जीवन पूरा पूरा खराब कर सकती है या तो पूरा पूरा उसके जीवन को सुंदर बना सकती है, वो उसके हाथ में है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्त्रियों में ये सहनशीलता, दया, प्यार, क्योंकि जिस तरह से स्पाइन नहीं होता शरीर में, उस तरह जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, वो पीछे रहती है लेकिन शरीर को सुंदरता देती है। अगर रीढ़ की हड्डी बोलेगी मैं आगे आऊंगी तो पूरी शरीर की सुंदरता खराब हो जाएगी। उस तरह से स्त्री जो है बैकबोन होती है हर फैमिली की, और वो बैक में ही सुंदर लगती है और पूरे पूरे परिवार को एक सुंदर स्वरूप देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकम ए गिवर। हाँ, मैं बहुत बार देखती हूँ, अगर मैं लोगों से पूछती हूँ आप शादी क्यों करना चाहते हैं, वे कहते हैं क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे खुशी चाहिए। फिर तो आपकी शादी अनसक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि अगर आप शादी सुख के लिए, मुझे सुख मिलेगा इसलिए मैं शादी करूँगी, तो आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी सुखी है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये खुशी किसी के साथ बांटना चाहती हूँ इसलिए शादी करना चाहती हूँ, तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सुखी है, आप दूसरों को सुख देना चाहती है। लेकिन आप दुखी है और आप सोचते हैं कि मैं इससे शादी करूंगी तो मैं सुखी बन जाऊंगी, तो आप कभी सुखी नहीं बनेंगे। अगर आप देना चाहते हो तो आपकी शादी सक्सेसफुल होगी। दूसरी बात, सिर्फ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। आप देखिए विदेश में ये कॉम्प्रोमाइज वे नहीं कर रहे हैं तो कितना सफर कर रहे हैं। मैं अदर डे एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी स्कूलों में 50% बच्चे सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं, या तो माँ है या तो बाप है। वो देख ही नहीं पा रहे हैं एक सुंदर परिवार क्या होता है, वे परिभाषा जानते ही नहीं है, उनका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है, और इससे पूरा सोसाइटी का पतन होगा। इसलिए तो आप देखिए अर्जुन विषाद योगा भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन क्या बोलता है, कुलस्त्री ये जब हम इतना बड़ा युद्ध होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, तो उनकी पत्नियां जो है वे अभद्र संग करेगी और फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनको कोई प्यार नहीं देगा, उन्हें कोई जो है केयर नहीं देगा, और फिर वे जो है आगे चल के पूरा सोसाइटी को खराब करेंगे, तो वर्ण शंकर होगा। इसलिए मैं मारना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडीज का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक 10 मिनट में आपको एक 4 D's, एक 4 important points बताना चाहती हूँ एज गर्ल्स। आप ये 4 D जो है अपने लाइफ में याद रखिए, 4 D's अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो यू कैन हैव ए हैप्पी लाइफ। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिसिप्लिन एंड डी फॉर डिवोशन। ये 4 चीज। डिस्क्रिमिनेशन, एज लड़कियां आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, आप जो भी करती है सोच और समझ के करना चाहिए। कोई भी चीज बस ऐसे ही, जैसे बोलते हैं ना, 2 चीज है, श्रेयस और प्रयास। कुछ चीज आपको इमीडिएट आनंद देती है और वो आपको अट्रैक्ट करती है, अरे ये कर लूंगी तो कितना मजा आएगा। कुछ चीजें अभी आनंद नहीं देती है लेकिन आगे चल के उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो हमें हमेशा सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। कोई भी चीज करने से पहले पॉज, ये वर्ड जो आप याद रखो, पॉज, थामो, पहले सोचो ये करने से क्या होगा। कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए, कैरिड अवे स्त्रियों का ये स्वभाव होता है, बहुत जल्दी मान जाती है हर चीज को, बहुत जल्दी मतलब हाँ शायद ये ऐसा ही होगा, नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली हर चीज को सोचना चाहिए। हम देखते हैं कॉलेज की लड़कियां, जैसे ही कोई लड़के को देखे कि बड़ी सी गाड़ी, कोई मर्सिडीज बेंज, साथ ही साथ में कैरी हो जाती है, अरे मैं इससे शादी करूंगी तो बहुत खुश रहूंगी, इसके पास पैसा ये है। आगे चल के पता चलता है वो गाड़ी भी रेंट पे लाया था, वो जो शर्ट पहनी थी वो भी रेंट पे लाया था, पैंट भी रेंट पे लाया था, सिर्फ चड्डी उसकी थी। और फिर बोलेगा कि मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, आगे चल के पिताजी के पास ले जाओ, उसको जॉब दिलाओ। इतना इमीडिएट डिसीशंस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्री का स्वभाव होता है, इसलिए हमेशा बड़ों की गाइडेंस लेनी चाहिए, कैरियर अवे नहीं हो जाना चाहिए। आप देखिए इस, आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे ना तभी लगेगा कि क्या सोचते हैं लोग, स्त्रियों को बुद्धि नहीं है क्या। आप एडवर्टाइजमेंट्स देखें, वो कोई फेयर एंड लवली क्रीम बताएंगे, ये बताएंगे इधर लगाओ उधर लगाओ, और
दस दिन में आप खूबसूरत हो जाएंगे और सारे आपके तरफ देखेंगे. और ऐसे ऐसे बेवकूफ वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं क्योंकि लोग मान जाते हैं ना, बिकॉज दे आर बिलीविंग, दैट्स वाई सच एडवर्टाइजमेंट्स आर कमिंग, क्योंकि लोग मान रहे हैं लड़कियां, इसलिए तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं. दो दिन में आप अप्सरा जैसे लगने लगोगे. तो रियलिटी क्या है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए. मुझे एक जोक याद आ रहा है. दो गधे थे, गधे दोस्त थे दोनों. तो एक का मालिक था और एक ऐसे ही घूमता था. अब जिसका मालिक था उसे रोज जो है बहुत ज्यादा वजन उठा के घूमना पड़ता था. तो उसके दोस्त ने कहा, इस मालिक की नौकरी छोड़ो, मेरे साथ आओ, देखो मेरा लाइफ कितना आराम से है, जहां चाहे थोड़ा सा घास खा लिया, कभी सो लिया, कभी उठ लिया, चलो मेरे साथ आ जाओ. बोला, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता. बोला, क्यों? बोला, तुम्हें पता है मेरा मालिक हर दो दिन उसकी बेटी को डांटता है, कहता है कि तुम अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो इस गधे के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी, हो सकता है मेरे साथ शादी करा दे, मैं इस इंतजार में बैठा हुआ हूं. अब ये तो बेवकूफी वाली बात है, ये तो ऐसे डांटने के लिए बोलते हैं कि गधे के साथ शादी करा दूंगा. तो उस तरह से कभी कभी जो लेडीज है ना, कैरीड ये हो जाती है कि कैरीड अवे हो जाती है, कोई भी चीज बस ऐसे ही मान लेती है. तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रखना चाहिए. सेकेंड चीज है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन माने चार नियमों का पालन करना. अब ये बहुत जरूरी है, जैसे अभद्र पुरुष संग, अननेसेसरी मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो नहीं खानी चाहिए. थोड़ी डिसिप्लिन रखनी चाहिए. इंद्रिय हमारी ऐसी है, हमें ये करिए, आज एक दिन खा लिया तो क्या हुआ, एक दिन कर लिया तो क्या हुआ. तो डिसिप्लिन जो है हमें रखना चाहिए, जो देखना चाहिए वही देखना चाहिए, जो खाना चाहिए वही खाना चाहिए, प्रसाद के सिवा और कुछ नहीं लेना चाहिए. थोड़ी डिसिप्लिन जो है हमें लाइफ में मेंटेन करनी चाहिए. सी, कोई कह सकता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज द फ्रीडम ऑफ ए स्ट्रीट डॉग. रास्ता का जो कुत्ता होता है उसकी फ्रीडम है, वो जो चाहे कर सकता है. लेकिन बेचारे को रात को कोई गाड़ी के नीचे सोना पड़ता है, रास्ते में कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है. जिस कुत्ते का मालिक होता है शायद उसे फ्रीडम नहीं होती है, लेकिन उसे अच्छे पेडिग्री के बिस्किट मिलते हैं, उसे अच्छे टब में स्नान कराते हैं. तो हाँ, तो आपको क्या चाहिए? या आप जो हमें अभी रेस्ट्रिक्शन लग रहा है वो एक्चुअली हमारे भले के लिए है. जिस तरह से आप देखिए, कभी कभी माताएं बच्चों को गोद में लेके शॉपिंग करती हैं, और बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, 3.5-4 साल के, बोलेंगे नहीं नहीं मुझे वॉक करना है, मैं कर सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो नीचे उतारो, ऐसा करके वो लोग मतलब ये करते हैं. लेकिन फिर भी मदर जबरदस्ती पकड़ती है, क्योंकि उसे पता है शॉपिंग मॉल में बहुत रश है, कहीं बच्चा गुम ना जाए. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही उसकी फ्रीडम को बांध दिया है. तो उसी तरह से हमें जो शास्त्र ने रेस्ट्रिक्शंस दिया है ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है. तो हमें इसे नाराज नहीं होना चाहिए, और इसका पालन करने से अल्टीमेटली हमारी रक्षा होगी. जिस तरह से कुछ कहा गया है कि देर रात तक बाहर में नहीं रहना, अनजान लोगों से नहीं मिलना, ऐसे कपड़े पहनना जिससे हम देखने में सुंदर लगे और लोग हमें आदर की दृष्टि से देखें. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ अगर हम पालन कर सके तो हम सुरक्षित रह सकते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन. हाँ, डिटर्मिनेशन लगेगा कोई भी चीज़ अगर करनी है तो. परसेवरेंस जो है होता है. सी, कोई भी चीज़ जीवन में पाना है तो कष्ट करना पड़ता है. कोई चीज़ को बनाने में बहुत देर लगती है, तोड़ने में तो बस 2 मिनट का काम है. हम अभी जनवरी में अहोबिलम गए थे, पहाड़ी जगह है, और नव नरसिम्ह के दर्शन किए, और इतना मुश्किल लग रहा था जो नरसिम्ह के दर्शन करने के लिए हम गए. जब पहाड़ को चढ़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल, लेकिन आते समय तो उतरने में इतना आराम लग रहा था, बस फटाफट फटाफट से हम उतर जा रहे थे. तो हर एक चीज़ ऐसी होती है, अगर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो डिटर्मिनेशन हमें रखना चाहिए. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिवोशन. हर एक चीज़ में अगर हम भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान को हमारे साथ रखेंगे, तो बुनियादी जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन हमारा इतना स्ट्रांग रहेगा, उसके ऊपर में फिर आप कितने भी स्ट्रक्चर्स बना लो, आपका बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगा. लेकिन अगर भगवान ही आपकी लाइफ में मिसिंग है, इवन अगर आप में सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, पेशेंस, टॉलरेंस, कंपैशन, मर्सी, एंथुजियाज्म, सब कुछ बेशक हो, लेकिन वो ज़ीरो है. जिस तरह से अगर मैं 1000 लगाऊँ तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अगर मैं उस 1 को वहां से निकाल दूं तो केवल 0 रिमेनिंग होगा. तो भगवान को जो है हमारे जीवन में ऐड करना है. अब ये सब सुनने के बाद में एक चीज आती है कि ठीक है, आप जो भी बोलते ठीक है, अच्छा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आजकल के लोग ये सारी बातों को कौन मानता है, सब कितने मॉडर्न है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोगों की बात का कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि जब आपके परिवार में जब पति पत्नी का झगड़ा होता है या आप दुखी है तब कोई मदद करने नहीं आएगा। अगर छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो आप खुश रहेंगे। संसार के लोगों का क्या है, वो तो हर एक सिचुएशन में आपके मजाक ही उड़ाएंगे। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, मेरे मदर मुझे बचपन में बताती थी कैसे एक पिता और पुत्र जो है एक गधे को लेके जाते मार्केट में बेचने के लिए। तो सारे बोलते कि पिता और पुत्र कितने बेवकूफ है, इस गधे को क्यों ऐसे चल के लेके जा रहे हैं, जब लेके ही जा रहे तो दोनों बैठ के जा सकते थे। तो लोगों की बात सुन के दोनों बैठ जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं तो फिर लोग बोलते अरे कितने क्रूर है, दोनों बैठ गए गधे के ऊपर में, बेचारे गधे को वजन लग रहा होगा। तो बेचारे पिताजी उतर गए, थोड़ी दूर गए तो बोले देखो ये बेटा कितना क्रूर है, अकेला अकेला बैठा है, पिता को चला रहा है, बूढ़े पिता को। थोड़ी देर के बाद में पिताजी बैठ गए, बेटा उतर गया तो बोला देखो पिताजी कितने क्रूर है, छोटा सा बच्चा चल रहा है और पिताजी जो है आराम से बैठे हैं। अब दोनों को गुस्सा आ गया, जो भी करो लोग खुश नहीं है। दोनों ने गधे को टांगे बांध के लकड़ी से जो है गधे को उठा के ले जा रहे थे। तब लोगों ने बोला कितना बेवकूफ है, गधे को कोई उठाता है क्या, गधे के ऊपर तो चढ़ के जाना चाहिए। अब वे इतने दोनों दुखी हो गए, गधे को वहीं छोड़ के वहां से भाग गए। तो ये दुनिया तो ऐसी है, आप कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन हमें इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, शास्त्र में क्या लिखा है, हमारे स्पिरिचुअल गुरु क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा कल्चर आजकल ये हो गया ना कि फेसबुक में कितने लाइक मिलते हैं दैट डिफाइन्स अवर स्टेटस, पर एक्चुअली किससे लाइक मिलते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या मैं जो कर रही हूँ, क्या मुझे मेरे गुरु से लाइक मिल रही है, मेरे माता पिता से लाइक मिल रही है, घर के बड़ों से लाइक मिल रही है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा फाइनल मैसेज आप सब लड़कियों को यही है कि जो भी डिसीजन लेंगे लाइफ में, कोई भी चीज़ के लिए हड़बड़ी मत करो, पेशेंस। आजकल का ये कल्चर जो है ना, ये क्या बोलते हैं ना, अमेज़न कल्चर। मुझे जस्ट कुछ दिनों पहले मेरा बेटा मुझे अमेज़न का ऐप दिखा रहा था, हम कुछ पर्दे ऑर्डर कर रहे थे, तो मैं इतना समय ले रही थी पर्दे ऑर्डर करने के लिए, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी इतना समय क्यों ले रही हो, पसंद नहीं आया तो वापस कर देंगे, रिटर्न पॉलिसी होती है अमेज़न की। और मैं उसको बता रही थी कि बेटा मैं उस जनरेशन से नहीं हूँ, हम जो जनरेशन में है हमें रिटर्न करना नहीं आता, हम एक बार जो चीज़ लेंगे सोच समझ के लेंगे और उसके बाद बस उसको जीवन भर रखेंगे हमारे साथ। हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, वो किराना स्टोर में जाते थे और बस तभी का तभी उस चीज़ को 10 बार देख लेते थे और बस एक बार ले लिया तो ले लिया, हमें रिटर्न करना ये हमारा कल्चर नहीं है। और ये अमेज़न में चीज़ों को रिटर्न करते करते हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है, हम सोचते रिश्ते में भी शायद रिटर्न पॉलिसी होगी, अब बस इसके साथ घूम लिया, थोड़ा दिन इसके साथ घूम लिया, नहीं पसंद है किसी और के साथ घूम लिया। ये हमारे मन को, हमारे शरीर को सब कुछ अपवित्र कर देता है और हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो जो भी करते हैं बहुत ही सोच समझ के, शांति से, बड़ों की एडवाइस लेके, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र चक्षु, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीज़ों के अनुसार करेंगे तो जीवन बड़ा आनंदमय रहेगा। तो इसी से मैं यहाँ ख़त्म करूँगी, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। ओके, सो आपका ये प्रश्न है कि डिवोटी लड़के से शादी करनी है लेकिन पिताजी कहते हैं कि अपने कास्ट में शादी करो। सी मेरी इस बारे में ओपिनियन काफ़ी डिफरेंट है, अगर आपको शॉकिंग लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिवोटी लड़के से शादी करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों की लाइफ को पास से देख रही हूँ, बहुत सारे मेल्स भी मुझे आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का अगर तिलक लगा रहा है, कंठी पहनता है तो वो अच्छा है और आपकी जीवन हमेशा खुश रहेगी, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि शायद आप दोनों का साइकोफिजिकल नेचर डिफरेंट हो, शायद वो कोई और कम्युनिटी से है, आप कोई और कम्युनिटी से, उसकी कल्चर अलग हो, उसकी डेफिनेशंस लाइफ की चीज़ों की अलग हो। हाँ, कृष्णा आप दोनों का सेंटर है, लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटी में शादी करेंगे, और एटलीस्ट जो मिनिमम लड़का पायस हो तो भी आगे चल के आप उसको भक्त बना सकते हो। सो बहुत जरूरी सी सबसे उत्तम और आइडियल होगा अगर आपको आपके कम्युनिटी में डिवोटी मिल जाए या कोई डिवोटी मिले जो आपके मदर या फादर जो है उसको पूरा स्क्रूटिनाइज करे और वे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर चीज में आप लोग के समान हो तो योर लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल। दैट वुड हैव बीन आइडियल। अगर नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन ठीक है आपके कम्युनिटी में, लेकिन कम से कम जो मिनिमम, जैसे मुझे पता नहीं मारवाड़ियों में तो शायद मांस ना खा, हम यहाँ साउथ इंडिया में तो लोग ज़्यादा ही, कम से कम जो मांस मछली ना खाता हो, भक्त हो, थोड़ा बहुत जो स्पिरिचुअल हो, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज मेरी जो थिंकिंग है, लड़कियों को कम उम्र में ही शादी करनी चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बेशक मुझे भला बुरा कहे कि क्या माताजी इतनी ओल्ड फैशन है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि 20 साल मैक्सिमम 21 साल तक तो शादी हो जानी चाहिए जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होती है, क्योंकि उसके बाद हमारी थिंकिंग बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है और दूसरे के साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं किसी और इंसान के साथ अपना कमरा शेयर करना, बाथरूम शेयर करना, अपनी पूरी जिंदगी शेयर करना, ये छोटी बात नहीं है। कि अभी शुरू शुरू में हनीमून टाइम तो बहुत सुंदर चला जाता है, लेकिन बाद बाद में हर चीज़ में एडजस्ट होना पड़ता है। खाने की हैबिट, एसी का टेम्परेचर, टवल कहाँ रखेंगे, सॉक्स कहाँ रखेंगे, जूता क्या करेगा, इतनी सारी चीज़ें आपको एक इंसान के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर वो आपके कम्युनिटी से हो तो काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि आपके फेस्टिवल सेम है, आपकी थिंकिंग सेम है, आपका कल्चर सेम है, आपका बैकग्राउंड सेम है, तो अब आपको दूसरी चीज़ों पे काम करने का समय मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ ही अलग है तो फिर तो आपकी मतलब क्या है ना, पहले साइकिल चढ़ाओ, फिर सीखो, फिर बैलेंस करो, कब बैलेंस करोगे, कब चलाओगे, तब जाके तो सुंदरता देख पाओगे प्रकृति की, तो ये काफ़ी पेचीदा है। दूसरा बात, मैं आजकल देखती हूँ लड़कियाँ 30 साल तक शादी नहीं करती है, 30-35 साल। अब मैं आपको बताऊँ इसमें एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, ये मेरी कोई ये नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, आपके हार्मोन्स डिप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में जो आपको बच्चा होगा ना वो उतना हेल्दी नहीं होगा। फिर जो 30-35 इयर्स में शादी करते हैं ना, उसके बाद में फिर आधा टाइम तो आपका जीवन पेडियाट्रिशियन के कैबिन में ही चला जाएगा, क्योंकि हमेशा बच्चे को कोई ना कोई डिजीज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द, फिर आप सब समय डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेके आओ, लेके जाओ, लेके जाओ। लेकिन जो यंग एज में शादी कर लेते हैं, उनका खुद का शरीर इतना तंदुरुस्त एंड फ्रेश एंड एनर्जेटिक एंड अच्छे से होता है, तब जो बच्चा पैदा होता है हेल्दी होता है बस, और माँ का दूध आता है अच्छे से, आप माँ का दूध पिलाओ, बच्चा हेल्दी, और नॉट ओनली दैट, आप जल्दी से फ्री हो जाते हो। जब जल्दी जल्दी बच्चा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, और आपको भी आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का कितना समय मिलता है। लेकिन जो शादी ही 35 में करेंगे, जब तक कि बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो आप उसकी दादी की उम्र के बन जाओगे, आपके बाल सफेद हो जाओगे जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगे, आप अपने बच्चे के साथ में आनंद भी नहीं ले पाओगे, उसके साथ कुश्ती करना, खेलना, उसके साथ बच्चे बन जाना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी उतनी उम्र हो गई है। तो द आइडियल इज, आप जब यंग एज में शादी करते हो तो सामने वाले पार्टनर के साथ में आप बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जा सकते हो, एडजस्ट हो जाओगे उसकी फैमिली की कल्चर, उसकी लाइफस्टाइल के साथ आप एडजस्ट हो जाओगे। सेकेंड थिंग, शादी कभी भी सेम एज के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ना दोनों या बच्चे बन जाओगे, दोनों झगड़ा करोगे, दोनों को सॉर्ट आउट कोई नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा एज डिफरेंस होने से, एक पर्सन ज्यादा मैच्योर होने से, वो दूसरे को बहुत जल्दी क्षमा कर देता, अरे चलो ये तो छोटी है, उसको क्या पता है। तो उस तरह से जो है दोनों एडजस्ट करके बहुत सुंदर से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो समय पे शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा सा एज गैप होना जरूरी है। और माँ बाप जहां कहे वहां शादी करने से शांति है, आपको पर्सनली इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी हुआ तो कम से कम आप उसको बोल सकते हैं मम्मी आपने कहा था। तो ये लोग, वो लोग ज्यादा मेहनत करेंगे आपसे भी ज्यादा कि आपका फैमिली लाइफ खुश रहे। और अगर आप खुद के भरोसे शादी करोगे, पूरा जीवन छोटी सी भी कुछ चीज हो जाएगी, आपके माँ बाप पहले ही टाना मारेंगे, मैंने तो पहले ही बोला था, तुमने सेलेक्ट किया, अब तुम भोग दो। सपोर्ट नहीं मिलता ना अगर फैमिली का, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है एक परिवार का। तो ये सारी चीजें जो है अभी समझ में नहीं आएगी इस उम्र में, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तब आप लगेगा अरे मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इतना सी हर एक पर्सन जो कंठी पहनता है, तुलसी माला या तिलक लगाता है, तो वो प्योर डिवोटी नहीं होता है. ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे अलग अलग डिजीज, अलग अलग रोग की मात्रा से लोग ज्वाइन हुए हैं. जस्ट बिकॉज सारे वो पेशेंट के यू नो सी वाइट ड्रेस में तो डॉक्टर भी होता है, नर्स भी होती है, और वाइट ड्रेस में पेशेंट भी होता है. आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट कौन है, डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है? तो ऐसा नहीं कि तिलक पहन लिया, कंठी पहन लिया, बस ये भक्त है इससे शादी करूंगी ना मेरे जीवन. मैंने बहुत सारे देख रही हूँ भक्त के साथ शादी करने के बाद में इतनी मुश्किलों में है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था, पता ही नहीं था. बाद में पता चला कितना वॉयलेंस हो रहा है घर में, और कैसे वो बाहर में अच्छा से चैंटिंग करता है, संडे प्रोग्राम में मंदिर में भक्तों के साथ अच्छा रहता है, लेकिन अंदर में उसका कोई और ही स्वरूप है. तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे. इसलिए मैं तो ऐसा एडवाइस करूंगी कि आपके पेरेंट्स के सिवाय इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, और जो आपका शुभचिंतक है, और उसका कोई और मतलब नहीं है, बस वो यही चाहते कि आप खुश रहे. तो उनकी एडवाइस के अनुसार अगर आप जाएंगे तो बढ़िया होगा. और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इवन अगर आपके पेरेंट्स आपको नॉन डिवोटी से शादी करवा रहे हैं ना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लेसिंग्स इटसेल्फ एक चमत्कार है. उनके ब्लेसिंग्स से आधी तो आपकी समस्याएं जो है आपके गृहस्थ जीवन में सॉर्ट आउट हो जाएगी. एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूंगी आप पूरा पूरा ब्लाइंडली यू नो किसी जिसके साथ कहा. सी आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है, कितना इंडिपेंडेंस देते हैं, कितनी आपकी सलाह लेते हैं. पुराने जमाने की कोई हिंदी फिल्म की स्टोरी तो नहीं है, जबरदस्ती आपको बिठा दिया किसी से शादी कराने के लिए. इनफैक्ट पूर्व में भी स्वयंवर होता था, लड़कियों को चॉइस दिया जाता था, लेकिन स्वयंवर में चॉइस था आप किस पे वरमाला डालोगे, लेकिन स्वयंवर में कौन आएगा वो पिताजी डिसाइड करते थे. स्वयंवर में जो 15 खड़े रहते थे वो 15 ही केपेबल थे. अब इसमें किसमें भी तुम डालोगी माला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका बैकग्राउंड चेकिंग हो गया है. बस उसी तरह से थोड़ा सा पेरेंट्स पे डालना चाहिए. ठीक है, आप जहां कहेंगे वहां 2-3 चॉइस दे दो अच्छी वाली, कम से कम थोड़ा सा पायस है जो मुझे मंदिर जाने से मना ना करे, जिसमें थोड़ा सा थोड़ी भक्ति करेगा, तो बाकी का तो आप संभाल लेंगे. आगे जाने के बाद में यू नो आप प्रसाद खिलाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, आप अच्छे से प्रेम से सेवा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा. ये मेरा मानना है. जरूर जरूर. सो हैप्पी टू सी यू. श्री कृष्ण मतमस्तु, श्री कृष्ण शुभमस्तु, श्री कृष्ण भक्ति प्राप्तिरस्तु. मे लॉर्ड श्री कृष्ण ऑलवेज बी इन योर हार्ट भव्या. आई एम सो हैप्पी टू सी यू. या प्लीज प्लीज गो अहेड. सो आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई शादी के बाद में भक्ति जीवन में आता है, लेकिन पति अगर भक्ति जीवन में कोऑपरेट नहीं करता, और पत्नी अगर आध्यात्मिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ रही है लेकिन पति उसी लेवल पे है, तो कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाए? तो अगर आपने शुरू से मेरा क्लास सुना है तो मैं इस बात को ही अलग अलग तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि इवन अगर आपके पति भक्त नहीं है, फिर भी अगर आप उसे सरेंडर करती है, और अगर आप उसको उसे सबमिट करती है, उससे सरेंडर करती है, तो फिर भगवान से सरेंडर करना हम सीख जाएंगे. तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और इवन अगर वो पति भक्त नहीं है फिर भी उनके अनुशासन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्यार से और भक्ति से उनको हम जीत सकते हैं. अब आपका ये क्वेश्चन होगा, फिर तो हमारे मानुष जीवन के ध्येय का क्या हुआ? हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है. इस जन्म में ये हमारे पति है, पूर्व में तो वे हमारे पति नहीं थे, और आने वाले जन्म में पता नहीं कौन हमारे पति है. ये तो somehow by destiny हम मिले हैं, तो क्या इस इंसान की वजह से मैं मेरे पूरा आध्यात्मिक जीवन खराब कर लूँ? सब जानने के बावजूद, इतने क्लासेस सुनने के बावजूद, भागवतम पढ़ने के बावजूद, इतना समझने के बावजूद भी अब क्या करूँ मैं? मेरा पूरा जीवन नाश कर दूँ, या उसको छोड़ूँ और अपने आत्मा पे अपने आध्यात्मिक जीवन के की यात्रा में आगे बढ़ूँ? अब यहाँ पे दो चीज़ है. अगर कोई आपका पति है तो आपके पूर्व के कर्म के अनुसार है और कर्म से कोई भाग नहीं सकता है। अगर आप भागोगे भी तो फिर से आपको जो है दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वो आपका पति बन के आएगा, फिर से लेना पड़ेगा। जब तक कि आपके कर्म खत्म नहीं होते कर्म से कोई नहीं भाग सकता है। तो अगर आपके कर्म में लिखा है कि आपको एक नॉन डिवोटी के साथ में रहना है और वो जो कहता है वो सारे सुनना है तो सुनना है। ओनली डिफरेंस इज भक्त अपनी परिस्थिति से भागता नहीं है, वो परिस्थिति में भगवान की शक्ति से उस परिस्थिति को वो फेस करता है। बस यही डिफरेंस आएगा आपके लाइफ में। सो पहले आप भी नॉन डिवोटी थे, दोनों एक साथ में नॉन डिवोटी काम करते थे या नॉन डिवोटी पार्टीज में रेस्टोरेंट्स में घूमते थे, उसके बाद आप डिवोटी बन गए लेकिन वो डिवोटी नहीं बना। अभी वो एक्सपेक्ट करेगा आप उसके साथ सिनेमा देखो, उसके साथ जाओ, तो वो जैसे एक्सपेक्ट करता है आपको वैसे ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। और अंतर में आपकी जो भक्ति वो आपको करनी चाहिए, जिस तरह से गोपियां करती थी। गोपियों को भी भगवान को पास रासलीला में जाने के लिए अलाउड नहीं था, वो अपने घर के काम करती थी। लेकिन हम जो ये सुनते हैं भागवत में कि वे रासलीला में गई थी, वो उनका दिव्य शरीर था, एक शरीर तो घर में ही था, इसलिए तो जब वे रात को रासलीला के बाद वापिस आती थी तो पतियों को कोई कंप्लेन नहीं था क्योंकि और एक शरीर यहाँ पे था। तो हम उस लेवल पे नहीं है, हम जिस तरह के अब सिचुएशन और लेवल में है हमारे लिए यही ठीक है कि हम दोनों चीजों को हार्मोनाइज करते हुए आगे बढ़े। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक है हमारा परिवार के साथ रिश्ता जो है और एक है हमारा वर्टिकल रिश्ता भगवान के साथ, और ये दोनों को हार्मोनाइज करना है। कोई भी एक चीज के ऊपर में पूरा अगर कोई पूरा अपने परिवार के बारे में सोचता है और भगवान को भूल जाता है तो भी उसकी लाइफ तो गई, क्योंकि अब तो ये भौतिक जगत में जन्म के बाद जन्म लेता रहेगा, उसका जीवन खराब हो गया। केवल कृष्ण के बारे में ये सोचेगा और अपने परिवार की ड्यूटीज से भागेगा, फिर तो प्रॉब्लम है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा जब तक कि उसने सारी ड्यूटीज ठीक से ना की हो। इसलिए तो अर्जुन भी तो भागे नहीं थे युद्ध क्षेत्र से, उन्होंने युद्ध किया था, वे तो प्योर डिवोटी थी। वो बोल सकते थे मेरे को और कोई धर्म लागू नहीं है, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं मेरे युद्ध करने का धर्म छोड़ता हूं और मैं भगवान की सेवा में चला जाता हूं। नहीं, उसने अपना धर्म किया। उसी तरह से एक हाउस वाइफ का धर्म है अपने पति के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना, वेदर वो भक्त हो ना हो, दैट इज इमेट। रही बात आपकी भक्ति की, तो भाई कलयुग में तो भक्ति बहुत सिंपल है, आप अपने हरे कृष्ण चैंटिंग करो, आपको तो कोई मना नहीं करेगा। आप अपनी 16 माला जप करना है करो, अगर आपको बोलने के लिए मना है तो मन में करो, आप अपना पूजा करो, आप जो प्रसाद बनाते हो भगवान को ऑफर करो। अगर आपको ऑफरिंग करने के लिए भी मना है तो जब खाना बनाती है वहीं गैस के ऊपर में ही भगवान को मन में याद करके ऑफर कर लो। तो बस आपको भक्ति तो सिंपल है, बस भगवान की कथा सुनना आजकल तो वो भी अलाउड है। सब अपने अपने हर परिवार में लड़का लड़की फादर मदर सब अपने अपने सेलफोन में बिजी है। आप अपने सेलफोन में क्या करती है, आपका पति तो अंदर में जाके देख नहीं रहा है कि तुम क्या करती हो। तो कथा सुनो, प्रसाद लो, जप करो, हो गया आपका स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट। बाकी वो क्या करता है वो उसका प्रॉब्लम है। तब आप ये सोच सकते हो कि वो एक जीव है, मैं एक जीव हूं, मैं कोशिश कर सकती हूं कि आप भक्ति में आइए, पर नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। उसके भी पूर्व की संस्कृति है, उसके भी पूर्व के कितने सारे कर्म उसने किए हुए हैं, उसकी सुकृति कब जागेगी तब वो भक्ति में आ पाएगा। प्रयत्न आप कर सकते हैं, प्रसाद खिलाओ, अपने आप प्रसाद खाते खाते भी शायद मन में कोई, लेकिन अपनी सेवा में अपनी पत्नी धर्म में आप एक भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, 100 out of 100 आना चाहिए। हर एक चीज जो बोलता है पालन करनी चाहिए, कभी भी नीची नहीं देखना चाहिए कि मैं तो भक्त हूँ आई एम डिवोटी और वो तो नॉन डिवोटी है, ऐसी भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। हमें डिमोनाइज नहीं करना चाहिए इस रिश्ते को, ये अग्नि के सामने जो ये रिश्ता में आप बंधे हैं, पति गुरु के समान होता है, वो आध्यात्मिक स्तर में जैसा भी हो इसकी आज्ञा का पालन करते हुए जाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। जब सेवा करते हैं धीरे धीरे बदलाव आता है इंसान में, और अंतर्मुखी अंदर में भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को तीव्र रूप से प्रार्थना करना चाहिए, ठाकुर जी मैं आपकी और भी सेवा करनी चाहती हूँ, और भी मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं और कथा सुननी चाहती हूँ, मेरी मदद करिए। ये आप अगर करते रहेंगे सही समय पे भगवान उसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ काफ़ी अलग दिशा में बदल सकता है और आपकी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसमें अल्टीमेटली ना उसको कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर वो दुखी है घर में सब कुछ दुखी है तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। आपके जप करते करते भी आपको लगेगा वो दुखी है, सास भी मुझसे दुखी है, कोई मुझसे खुश नहीं है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो सबको खुश रखना कि बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑफकोर्स ये काफी बड़ा आंसर इसका हो सकता है, बट जैसे मैंने बताया प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रहो, नॉर्मेटिव मत बन जाओ, प्रिस्क्रिप्टिव मत बन जाओ जो है, देन हम्बल रहो तो लव कैन मूव माउंटेन्स. मैंने अभी भी अभी अभी इसको एक्सप्लेन किया ना कि जिस तरह से दूसरा बच्चा होता है तो पहला बच्चा बहुत इनसिक्योर हो जाता है कि मम्मी अभी उसको ज्यादा प्यार करेगी, मुझे नहीं प्यार करेगी. उस तरह से जब हम कृष्ण से प्रेम में पड़ जाते हैं तो फिर पति थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है कि अभी वो कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती है, प्रभुपाद को प्रेम करती है, मुझे प्रेम नहीं करती है. तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, काफी डेलिकेट और सेंसिटिव इश्यू है. तो इसलिए हर बार उनको भी उतना ही प्रेम और उतना ही रेस्पेक्ट और इनफैक्ट हो सके तो पहले से ज्यादा प्रेम दिखाना चाहिए, सो दैट वो और भी सिक्योर फील करे कि अच्छा भक्ति में आने के बाद मेरी पत्नी मुझे और भी ज्यादा प्रेम करती है तो तो भक्ति बहुत अच्छा है, तो करो 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 और भी भक्ति करो. तो ये मैंने ऐसा बहुत लोगों को काउंसिल करके देखा है ना कि आफ्टर कमिंग टू डिवोशनल लाइफ ना आई टेल देम कि ज्यादा हम्बल, ज्यादा ओबीडियंट. तो वो लोग बोलते कि माता जी, फिर हमारे पति बोलते कि कौन कहां जाते हो तुम, क्या इस्कॉन में तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं. एंड दे बिकम सो हैप्पी कि हमारी वाइफ में इतना चेंजेस आ रहे हैं. बट एक्चुअली सब लोग ना गलत कदम लेते हैं. वो क्या करते हैं, भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा अपने आप को मैं भक्त बन गई हूं, तो उसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. उसके बदले में ज्यादा विनय बन जाना चाहिए कि इतना अच्छा चांस दे रहे हैं मुझे भक्ति करने के लिए मेरे हस्बैंड, तो और भी ग्रेटफुल और भी थैंकफुल, एवरी मोमेंट उनको ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हैं. तो ऐसे अगर आप करेंगे तो पूरा परिवार का एटमोसफेयर भी बहुत सुंदर रहेगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरी पत्नी जो कर रही है उससे मेरी वैल्यू और भी बढ़ रही है. शी इज नॉट यू नो मेकिंग मी फील लो, शी इज अप्रिशिएटिंग मी मोर देन बिफोर. और वो आपको जरूर एंकरेज करेगी कि भाई क्या पढ़ती हो, पढ़ते रहो, इसके बाद तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है. सी भक्ति में आने के बाद अगर सब्जी में नमक डालना भी भूल जाएंगे ना तो उसका दोष भी प्रभुपाद जी को जाता है. कहेंगे बोलेंगे अरे देखो ये भक्ति में आने के बाद ये तो कोई ठिकाना नहीं है खाने का, पहले तो कैसे बनाती थी अब क्या बना रही हो. अगर थोड़ा सा एक टॉवल या कोई नैपकिन भी सोफा पे रह गया ना बोलेगा अभी देखो भक्ति में आया घर एकदम, पहले तो कितना नीट एंड क्लीन रहता था. सो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब जानबूझ के वो हर चीज में दोष देखेंगे बिकॉज ही इज सो इनसिक्योर कि वो किसी और को इतना मान क्यों देती है, इतना प्यार. तो अब हर चीज में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे. तो ये गेम है एंड यू शुड नो टू प्ले द गेम. ये गेम खेलना आना चाहिए आपको, यू शुड बी एक्सपर्ट प्लेयर. अब तो गलती निकालने की और भी चांस नहीं देनी चाहिए, अब तो पहले से भी ज्यादा हर चीज ठीक करके दिखानी चाहिए. बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, एक मिनट है, आई जस्ट. बहुत सुंदर है क्वेश्चन आपका कि सर ढकने का क्या है. जैसे प्रभुपाद जी के टाइम पे सारे लेडीज सर ढक के रखते थे और दैट वाज द इंडियन कल्चर. इनफैक्ट मेरे मदर वगैरह को भी मैंने देखा है, हमेशा वे सर ढक के रहते थे. बट द ओनली थिंग इज हमारा जो ये प्रीचिंग मूवमेंट है, हम लोग क्या करते हैं अनुकूलस्य, जो कृष्णा भक्ति में फेवरेबल है उस चीजों को अपनाते हैं. जो चीज हमें अनफेवरेबल हो जाती है, हमें डिस्टर्ब होती है, हम उसको नहीं अपनाते. ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो है बहुत ही सुंदर मंत्र है. अगर आप देखें प्रभुपाद जी के टाइम पे भी, प्रभुपाद जी सबके साथ में डिफरेंट से डिफरेंटली डील करते थे. जो वेस्टर्न लेडीज थी उनके साथ प्रभुपाद डिफरेंट डील करते थे. उनको कभी प्रभुपाद जोर नहीं करते थे कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे दीज लेडीज आर इक्वल टू मैन, उनका नेचर ऐसा है, उनको उनके लिए यही ठीक है. जो इंडियन लेडीज थी उनको प्रभुपाद जी अलग से ट्रीट करते थे. सो अब होता क्या है, सबका एक अपना अपना ब्रॉटअप होता है, अपना 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 कन्वीनियंट क्या बोलते हैं कंफर्ट, सबका अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है और वो उसी कंफर्ट जोन में भक्ति करने में उनको सुविधा होती है. अगर उसको डिस्कम्फर्ट में डाल देते हैं तो वो भक्ति नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल जैसे इस्कॉन में कुछ भक्त कहते हैं वर्णाश्रम, हमें जो है फार्म्स में रहना चाहिए. तो आप इमेजिन करिए कोई अगर बचपन से अर्बन लाइफ में बड़ा हुआ है, अगर उसको जबरदस्ती करोगे कि तुम्हें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो तुम्हें फार्म में रहना पड़ेगा जहां पे देखो बाथरूम की सुविधा नहीं होती है, तो अब क्या होगा, उसको भक्ति में इतना डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि वो बचपन से कुछ लग्जरी कुछ कंफर्ट का आदि आदि आदत बन चुकी है उसकी, अब उसको रूरल लाइफ में एडजस्ट करने के लिए बोलने से उसका भक्ति तो पूरा जो है कूड़ा में जाएगा, और वो आधा टाइम बाथरूम कैसे जाऊँ, ये लुंगी कैसे पहनूँ, सब डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारा कम्फर्ट क्या है, क्योंकि द होल पॉइंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज हम जो भी कर रहे हैं इट्स टू फैसिलिटेट अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई चीज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस में फैसिलिटेट नहीं कर रही है तो हम उसे छोड़ सकते हैं विद दी परमिशन ऑफ अवर गुरु। आप गुरु से पूछ सकते हो, मुझे ये इनकन्वीनियंट हो रहा है तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो उसके अनुसार हम चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं विशाखापट्टनम में, ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे 80% ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा। आप जैसे बाहर नहा के बाहर निकलोगे तो विद इन 10 मिनट्स पूरे बॉडी एकदम पसीना पसीना हो जाता है। यहाँ पे अगर लेडीज सिर ढक के चले तो दे विल बी सो इनकन्वीनियंस, क्लास देना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, सो मच स्वेटिंग हो जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो फैन बंद है, क्योंकि फैन चालू करने से फैन का आवाज वीडियो में आ जाता है, तो इसलिए फैन बंद रखना पड़ता है। तो कभी कभी एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं सिर्फ बात करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृष्ण कथा बोलना इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो हर एक चीज के पीछे एक कारण है। सिर ढकने के लिए इसलिए बोला जाता था कि मेन के सभा में अगर पीछे से आपके बाल लोग देखते हैं तो मे बी दे मे गेट अट्रैक्टेड, एंड दैट इज वन थिंग। ब्रह्मचारी के सभा में आप है तो यू शुड जस्ट कवर योर हेयर। अदर रीजन होता है कि लेडीज लोगों को जो ब्लाउज होता है ना एकदम डीप कट है तो पीछे से सब आधा शरीर दिख रहा है, तो दे डोंट वॉन्ट टू डू इट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे हमारे इंस्टेड ऑफ यू नो वेरिंग अ डीप कट, यहां तक अगर आपका शरीर कवर्ड है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे अगर कोई कोल्ड कंट्रीज में है तो शायद उनके लिए कन्वीनियंट है, कोई बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल हॉट कंट्री में है शायद उनके लिए ओढ़ना पॉसिबल नहीं है, कोई शायद सिटी लाइफ में बड़ा हुआ है जिसके लिए सारी कैरी करना ही शायद बहुत मुश्किल है, उसमें अगर वो ओढ़ के बैठेंगे तो आधा कॉन्शियसनेस उसमें ही जाएगा कि नीचे गिर गया क्या, पल्लू ऊपर के नीचे, उसमें क्लास नहीं बोल पाएंगे। तो व्हाट इज मेकिंग यू कन्वीनियंट यू कैन डू दैट। हमें बहुत ज़्यादा भी क्या बोलते हैं ना एडमेंट नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही है ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद वाज सो अकोमोडेटिंग, जिसका जैसा ब्रॉट अप है राइट। सो हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए सर ओढ़ना में बिकम ए सच अ बिग हेडेक कि जब से ज़्यादा क्लास से ज़्यादा उसी में कॉन्शियस हो जाएंगे। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसलिए आपको भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, जिसको जो कन्वीनियंट हो। ओनली थिंग द होल पॉइंट इज समबडी शुड नॉट बी वल्गरली ड्रेस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ड्रेस कि इतना रिवीलिंग इतना वल्गर है, शुड बी डिसेंटली मॉडेस्ट लुकिंग तो काफ़ी है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी कोई एल्डर्स के सामने जाते हैं तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट आप से रोड लेते हो। जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मेरे पर्सनल लाइफ में नेचर ऑफ योर सेवा, जैसे कभी कभी कुछ लोगों का सेवा ऐसा होता है कि दे कैन ईजिली अपना सिर ओढ़ के कहीं कोना में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं या माला बना रहे हैं, दे आर कन्वीनियंट। किसी किसी माताजी लोग का सेवा ही ऐसा होता है कि दे हैव टू बी रनिंग ऑल द टाइम। कभी जैसे मैं यहाँ पे कार भी चलाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, स्कूल भी चलाती हूँ, यहाँ आई एम इतना ज़्यादा एक्टिव काम होता है कि उस टाइम पे अगर सिर ओढ़ के रहना है तो 50% एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो देन आई थिंक कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर ओढ़ना या सेवा ज्यादा करना। नहीं, सेवा ज्यादा करना, दैट विल मेक माई गुरु मोर हैप्पी, तो देन आई एम डूइंग दैट। सो दैट्स अबाउट व्हाट इज हेल्पिंग यू इन योर सेवा, दैट यू शुड पिकअप। सो दैट्स वाई वी नीड अ गुरु। अदरवाइज हम लोग ना ये हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा लिखा है ना शास्त्र में, ये ऐसा ही होना चाहिए। अरे इसके पीछे कारण क्या है, क्या है, किसी को क्या असुविधा हो रही होगी, हम बिना सोचे समझे जजमेंटल हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइम पे हमारे मेंटर्स या स्पिरिचुअल गुरु हमें बहुत काम में आते हैं, क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं पूछना चाहिए, और उसका आंसर सुन के जो है हमें एक क्लियर आइडिया मिलती है। आई होप दैट सैटिस्फाइज यू। ओके, सो योर क्वेश्चन इज अगर बहुत विजिबली वल्गर लग रहा है तो मैं क्या करूं? तो ऐसे टाइम पे आप जिस भी डिवोटी का वीडियो है उनसे आप बताइए कि भाई ये पल्लू थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई थिंक योर होल एटीट्यूड और मोटिव इज टू हेल्प द पर्सन। सो इफ इट्स नॉट इफ इट्स रियली लुकिंग वेरी वल्गर और बहुत बुरा लग रहा है, देन यू कैन डिस्कस विद अदर सीनियर वैष्णवीज एंड लेट देम सी ऑल्सो. शायद कभी कभी आप प्रेजुडिस हो, शायद कभी कभी आप जो देख रही हो शायद किसी और को कुछ और दिख रहा हो. सो बेटर यू टेक एडवाइस फ्रॉम अनदर टू थ्री सीनियर वैष्णवी माता जी. सो आप क्या सोचते हो, दिस इज वॉट इट इज लुकिंग लाइक, एंड टेक देयर एडवाइस एंड गो अहेड. बट इफ समथिंग इज विजिबली लुकिंग वेरी वल्गर देन यू कैन डेफिनेटली से, जैसे कभी कभी कुछ गलत तरीके से बैठे हैं या सही नहीं दिख रहा है, तो आप कह सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है. बट ऑलवेज सिंस यू आर यंग, ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम अदर सीनियर माता जी एंड टेक देयर गाइडेंस बिफोर मेकिंग एनी कमेंट और यू नो एनी अपराध टू एनी वैष्णवा. सो दैट विल हेल्प योर स्पिरिचुअल लाइफ. बिकॉज आपकी सेवा ही ऐसी है, आपकी गलती नहीं है, यू आर गिवन दैट्स काइंड ऑफ सर्विस. बट बेटर टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम अदर सीनियर माता जी ऑल्सो. See, इस टॉपिक पे मैं काफ़ी प्रवचनों में बात कर चुकी हूँ और बहुत सारे टिप्स भी दे चुकी हूँ. बट यहाँ पे एक लाइन मैं संक्षेप में कहना चाहूँगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बस रीजनेबली गुड हो सकता है. परफेक्ट तो सिर्फ कृष्णा हो सकते हैं. तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आई एम ए परफेक्ट वाइफ एंड आई एम ए परफेक्ट मदर एंड आई एम ए परफेक्ट डॉटर. आई कैन बी रीजनेबली गुड, दैट्स ऑल वी कैन डू. सो रीजनेबली गुड माने जो हमारा मेन फोकस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसको सामने रखते हुए जितना पॉसिबल है उतना अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना है. सो लाइक ए वन प्रैक्टिकल मुझे इन्विटेशंस आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से क्लासेस देने के लिए. सो द अमाउंट ऑफ इन्विटेशंस आई गेट, मे बी 365 डेज of the year I can keep giving classes, फिर भी temples will be waiting in line. But I am very selective and मैं सिर्फ weekly 2 or 3 classes देती हूँ so that I can give some time to my family and the other works that I am doing. So उस तरह से one has to know one's priorities, किसको कितना priority देना है. Because भागवत में वगैरह जो भी लिखा है वो सब स्टैंडर्ड्स मॉन्क के स्टैंडर्ड है, मतलब ब्रह्मचारी के स्टैंडर्ड है. पर एक्चुअली हम तो गृहस्थ है, तो हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो अगर कोई आप ही कंप्लेन कर सकता है कि अगर आपको प्रचार करने का चांस मिल रहा है, लोग सुनना चाहते हैं, फिर भी आप क्लासेस नहीं देते हैं, सिर्फ 2-3 ही देंगे, तो क्या आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को जस्टिस कर रही है? हाँ, क्योंकि मेरी बहुत सारे धर्म है. एक तो निमित्तिक धर्म है, नित्य धर्म है, और हर एक चीज़ को मुझे बैलेंस करके चलना है. तो आई एम सेलेक्टिव. मैं वीकली इतने ही दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती. मैं ये ही कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. सो ऐसे मैंने कुछ रूल्स बना लिए हैं. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 8-8-8, तो वैसे अपनी 16 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए भी टाइम और वांचन का टाइम और प्रसाद लेने का टाइम और रेस्ट का टाइम, ऐसा हमें बैलेंस करना है. एट द सेम टाइम ये नहीं कहूँगी कि मेरा हमेशा परफेक्ट बैलेंस है. हमेशा बैलेंस थोड़ा सा ऐसा होता रहता है. बट कोशिश ये है कि उसे वापस लाने का. सो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस लेवल है, हाँ ये इधर जा रहा है, चलो इसको थोड़ा और करो, इसको बंद करो, इसको ऐड करो, बस ये ऐसा बैलेंस चलता रहता है. जिस तरह से एक पायलट एयरक्राफ्ट को जब चलाता है बॉम्बे से चेन्नई, ऐसा नहीं कि वो हमेशा सीधी लाइन में करेक्ट करेक्ट चला जाता है. बार बार प्लेन इधर जाता है उधर जाता है और बार बार प्लेन को वो वापस लाता है. तो बस हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है. बैलेंस मतलब ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ क्लासेस ज़्यादा हो गए, कभी कुछ ये हो गया, बस उसको बैलेंस करते 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 जो है लाइफ को आगे बढ़ाते हैं. ऑल्सो बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है मेरे फैमिली में, मेरे हस्बैंड का और व्हाट्स एको कमिंग मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा योगदान है मेरे आध्यात्मिक जीवन में. और एक्चुअली लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैं प्रवचन देना नहीं चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड फोर्स करते हैं. तो आज भी किसी बात पे हमारा ये हो रहा था, तो ही सेज़ नो, हाउ कैन यू स्टॉप, यू हैव टू कंटिन्यू, दिस इज़ योर सर्विस. यू नो कभी कभी जैसे मैं बहुत सारे और भी मेरी बहुत सारी सेवा है इस मंदिर में, तो हमारा ऐसा ये है. तो ही ऑलवेज एनकरेजेस मी कि नहीं, यू हैव टू, यू नो. इनफैक्ट मेरा जब स्केड्यूल बनता है तो वो मुझे फोर्स करते हैं कि और एक क्लास ऐड कर लो, और एक क्लास ऐड कर दो. तो ऐसा है. और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है एंड हाईली कोऑपरेटिव, यू नो. मैं बहुत बार ये क्लासेस में भी कह चुकी हूँ कि मेरा बेटा कहता है कि सबकी माँ तो सिर्फ उनकी माँ होती है, आप पूरी दुनिया में कितने लोगों की माँ है, तो मैं कितना प्राउड हूँ जब मैं आपको देखता हूँ. तो मेरे बच्चे बिल्कुल, मतलब कभी कभी जैसे शायद कुछ समय जो उनको देने का होता है, शायद मैं उस टाइम पे उधर ना हूँ कभी कोई. ऑफकोर्स आजकल तो लॉकडाउन के वजह से काफ़ी सुविधा है घर में बैठ के जूम, लेकिन पहले तो जैसे क्लासेस है, कोई कॉलेजेस में सेमिनार है, तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड ऑलवेज फीलिंग सो हैप्पी कि नहीं ठीक है, वॉट एवर टाइम यू आर गिविंग अस दैट्स क्वालिटी टाइम एंड वी आर सैटिस्फाइड. सो मेरे घर का परिवेश ही ऐसा है, द होल फैमिली इज़ वेरी स्वीट एंड कोऑपरेटिव एंड स्पेशली माई हस्बैंड इज सच अ बिग सपोर्ट. Always pushing me for, you know, ki nahi, you should give more classes and also it's a blessing of the Lord. So discuss with your parents. आप अपने parents के साथ discuss करिए. आप शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है, आप जो भी higher studies करने चाहती है आप शादी के बाद भी कर सकती है. से एक्चुअली कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वुमेन, बट आई फील बिहाइंड मी, मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, यू नो, इज ए बिहाइंड माई सक्सेस. बिकॉज जैसे मैंने मेरे शादी के बाद किया मेरे PhD, मेरी जो भी डिग्रीज आप देख रहे हो, एंड इट वॉज सच ए बिग सपोर्ट. इनफैक्ट मैं करना नहीं चाहती थी PhD, और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, वेन यू हैव द टैलेंट यू डू इट, तुम आगे पढ़ो. सो ही वॉज द वन हु वॉज पुशिंग मी और जबरदस्ती मुझसे जो ये डॉक्टरेट करवाया. तो यू कैन ऑलवेज स्टडी आफ्टर मैरिज ऑल्सो इफ यू जस्ट गेट द राइट पार्टनर. सो यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स कि हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे पढ़ूँ तो मैं उन्हें पढ़ूंगी, शादी के बाद भी तो पढ़ सकती हूँ, सेलेक्ट अ नाइस बॉय फॉर मी, और मैं अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छी है और आप पढ़ना चाहती है तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हो. सो इफ़ यू डू अर्ली मैरिज यू विल बी फ्री अर्ली. जैसे अभी आप देखिए, इन माई लाइफ माई एल्डर सन इज 20 नाउ, सो आई एम फ्री नाउ, यू नो, आई एम गेटिंग मोर टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. बट दोज हु हैव लेट मैरिजेस वो दे विल बी स्टिल बिजी टेकिंग केयर ऑफ द टॉडलर्स एंड चिल्ड्रन. तो यू नो, एंड सी एज से मैच्योरिटी आती है. So now at the right time, जब बच्चे बड़े हो गए हैं, then you have more time for Krishna consciousness. And when you are young and energetic, आप अपनी पूरी energy बच्चों को बड़े करने में use कर सकते हो. तो that's my advice. You can discuss with your parents.
Thank you.
Okay. Should girls do job after marriage? Controversial question. कि दोनों भाग से मैं आंसर दूंगी तो कोई ना कोई तो नाराज होगा, बट मेरी ओपिनियन दे शुड नॉट. मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती हूँ कि हालांकि मैं खुद स्कूल चलाती हूँ बट मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं किसी के नीचे काम नहीं करती हूँ. मेरे नीचे बहुत सारी लेडीज काम कर रही है. मेरा स्कूल एक ऑल फीमेल जोन है जहाँ पे सिर्फ हाउसवाइफ्स जो है काम कर रही है. बट नाउ सी, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसका मैं दो लाइन में आंसर नहीं दे सकती, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. फर्स्ट थिंग इज, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत करिए. इफ़ योर, अगर आपके हस्बैंड काफ़ी कमा रहे हैं तो मत करिए. आप एक सुंदर सा घर का वातावरण बनाइए. सी, प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी का है. अगर आप आज जाके किसी को बोलोगे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक होममेकर हूँ, तो लोग रेस्पेक्ट नहीं करते. अच्छा, तो आप सिर्फ घर चलाते हो? एक्चुअली घर चलाना इट्सेल्फ इज सच ए बिग बिजनेस. अगर उसको अच्छा से किया जाए तो कितने सारे काम होते, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है सिचुएशन. सोशल मीडिया ने वर्किंग लेडीज को बहुत, मतलब क्या, ऊंचा स्थान दे दिया है कि कोई काम करता है बाहर मतलब कितना स्मार्ट है, और कोई आप घर में है, आप हाउसवाइफ है, उस तरह से बिहेव करते. तो इसलिए वो प्रेशर की वजह से कुछ लोग काम करते हैं. कुछ लोग काम करते उनकी ज़रूरत है, सच में ऐसी सिचुएशन है लाइफ में कि नहीं काम करेंगे तो नहीं होगा, दोनों पति पत्नी को काम करना ही पड़ेगा, कुछ लोन्स है, कुछ है. कुछ लोग काम करते हैं शौक से, और कुछ लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम है, अगर नहीं करेंगे तो दे विल बी वेस्टिंग टाइम. जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे बच्चों का गुरुकुल सबके लिए नहीं होता था. जैसे भगवान राम गए थे, कृष्ण गए थे, लेकिन हर एक पर्सन गुरुकुल नहीं जाता था, घर में ही माताएं पढ़ाती थी. अब क्या होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हर एक बच्चा स्कूल जाता है, किसी का होम स्कूलिंग नहीं होता है, एवरीबडी गोज टू स्कूल. और मिक्सी आ गया, ग्राइंडर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, सर्वेंट्स आ गए, गैजेट्स आ गए, काम इतना आसान हो गया है कि अभी घर का काम तो आधा एक घंटा में फ्री हो जाता है. फिर अगर कुछ करने के लिए नहीं है तो पूरा दिन टीवी या तो यूट्यूब या तो ऐसे करके टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपनी पूरी टैलेंट्स इंटेलिजेंस बुद्धि को आइडल बना देते हैं। तो फिर मन में ख्याल आता है कि अरे ऐसे आइडल बनाने के बदले में चलो जाके कहीं काम करने से ही अच्छा है, कुछ तो करेंगे, कुछ तो लाभ होगा। सो ऐसा अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत है। अगर आप कोई सोचता है कि नहीं मैं बोर हो जाती हूँ घर में करने के लिए कुछ नहीं, तो आजकल तो बाबा ऑनलाइन भी इतने सारे काम है, आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स ट्रांसक्रिप्शंस कर सकते हो, आप बहुत सारे सेवा कर सकते हो, क्लासेस सुन सकते हो, क्लासेस दे सकते हो। ये सब भक्तों के लिए, जो भी नॉर्मल है अभी अभी भक्ति जीवन में है उनके लिए भी कम से कम एक चीज हम कर सकते हैं केयरफुली, कि हमारी वर्क टाइम, अगर करना ही है काम तो वर्क टाइम ऐसा रखो कि ज्यादा स्ट्रेन, ऐसा नहीं कि सुबह जाएंगे तो रात को आएंगे, हाफ डे काम कर लिया सो दैट यू आर बैक होम, बच्चे स्कूल से आए उसके पहले आप घर पहुंच गए हो, और आप इतने ना थक जाओ, इतने ना ड्रेन हो जाओ कि फिर घर में एक नैपकिन भी यहां से यहां रखने की शक्ति ना बचे। उतना मत करो, जस्ट डू इट इन ए बैलेंस वे। सो थोड़ा बहुत जो दो चार घंटे फ्री है कुछ मैंने यूटिलाइज किया, एट द सेम टाइम मेक श्योर आप सही एटमोसफियर में सही जगह पे काम करते हो, जहां पे आपको अब्यूज ना हो, कोई आपका गलत फायदा ना उठाए, आप एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करो। सो फर्स्ट प्रायोरिटी काम मत करो, घर में रहो, मेक अ ब्यूटिफुल हैम। नहीं करना ही है, फ्री टाइम है, ऑनलाइन कोशिश करो, घर से वर्क करने की कोशिश करो, नहीं होगा पार्ट टाइम करो, नहीं पूरा करना है कम से कम सेफ एटमॉस्फेयर में करो, ऐसे जगह में मत करो जहां पे आपका मन आपका शरीर सब कुछ अपवित्र हो जाए और ऐसे लोगों का आपको संग लेना पड़े। सो जैसे हमारी स्कूल में डिवाइन टच ऑल लेडीज जोन है, एक्सेप्ट जो हमारा ड्राइवर होता है स्कूल के बच्चों को लेके आता है, बाकी सारे लेडीज एटमॉस्फेयर में काम करते हैं और सब हाउसवाइफ्स है, और जो भी हाफ डे स्कूल है तो 9 बजे आते हैं एंड 12:30-12 बजे तक तो दे ऑल गो बैक होम। तो 2-3 घंटा बच्चों के साथ में वो स्पेंड करते हैं, तो जो भी उन्होंने पढ़ा है उनकी स्कूल कॉलेज में वे जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और लव एंड अफेक्शन देते हैं, अच्छी स्पिरिचुअल वैल्यूज सिखाते हैं, एंड देन दे सेफली गो बैक होम। और ये छोटा सा शहर है, बॉम्बे दिल्ली चेन्नई जैसा नहीं है, वो अपने घर से स्कूल आने के लिए 20-25 मिनट लगती है, स्कूटर में आ जाते हैं और 20-25 मिनट में घर चले जाते हैं, तो इट्स ब्यूटिफुल एटमोसफियर। तो वैसा कुछ है तो बस ठीक है, बट आजकल ये जो बॉम्बे चेन्नई दिल्ली में तो जाओगे 2 घंटा आओगे 2 घंटा फिर ड्रेन हो जाते हो, फिर ऑफिस में कॉरपोरेट ऑफिस में काम करोगे तो उसका स्ट्रेस इतना ज़्यादा, फिर एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, डेडलाइंस होती है। तो वर्क भी आपका कैसा वर्क है ये भी देखो, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, वुमेन के लिए जो सूटेबल है ऐसा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करो। जैसे टीचिंग करना, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, किसी को पढ़ाना ये तो एक नेचुरली वुमेन को आता है पढ़ाना, है ना, बात करना, तो ऐसे कुछ अच्छा प्रोफेशन सेलेक्ट करो जहां पे आप सेफ एनवायरमेंट में रह सको। ओके, ऑल राइट, काफी देर हो चुकी है, यहाँ पे खत्म करते हैं। कृष्णा 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 लगे सब, कृष्णा 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 लगे सब, कृष्णा 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 लगे सब, कृष्णा कृष्णा।